आगे सबक देखिए भाई। काला वल खराजुल्लदी वजअहु उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अला अहलि सवादि मिन कुल्ली जरीबी यब्लुगुहुल माउ कफीजुन हाशिमियुन وهو الصاع والدرهم ومن جريب الرطبة خمسة دراهم ومن جريب الكرم المتصل والنخيل المتصل عشرة دراهم। भाई गुज़श्ता सबक में हमने बाबुल उश्र वल खराज पढ़ना शुरू किया था। भाई आप जानते हैं कि मुसलमानों की जमीनें जो हैं उनमें उशर वाजिब होता है और कुफार की जमीनों में खराज वाजिब होता है। उशर के अंदर इबादत का पहलू है और खराज के अंदर सजा का पहलू है, और नीज उशर का ताल्लुक हकीकी पैदावार से होता है, यानी जमीन से पैदावार हासिल होगी तो उसका दसवां हिस्सा जो है वो सदका करना पड़ेगा। तो इस उशर का ताल्लुक हकीकी पैदावार से है, पैदावार हुई तो उशर भी आएगा, पैदावार नहीं तो उशर भी नहीं है। जबकि खराज का ताल्लुक जमीन से पैदावार हासिल करने की कुदरत पर है, तो जब जमीन से पैदावार हासिल करने की कुदरत मौजूद है तो खराज लाजिम होगा, चाहे जमीन पर कुछ काश्त किया जाए या काश्त न किया जाए। और नीज ये भी याद रखना, उशर जो है हर पैदावार के अंदर आएगा। अगर साल के अंदर कई फसलें काश्त की तो हर फसल के अंदर उशर अदा करना पड़ेगा, जबकि खराज जो है वो साल में एक मरतबा अदा करना पड़ता है। और साहिब हिदाया ने बयान फरमाया था कि अरब की सारी जमीन जो है वो उशरी है, और इसकी लंबाई जो है उजैब मकाम से लेकर यमन के अंदर हजर मकाम के आखिरी किनारे तक है, और चौड़ाई के अंदर जद्दा के साहिल से लेकर शाम की हद तक है। जबकि इसके मुकाबले में सवाद इराक की जो जमीन है वो खराजी जमीन है, और सवाद इराक की जो जमीन है वो चौड़ाई के अंदर उजैब मकाम से लेकर हुलवान की घाटी तक है, और लंबाई के अंदर सालबिया से लेकर अब्बादान तक है। भाई और फिर साहिब हिदाया ने दलील जिक्र फरमाई थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम और खुलफाए राशिदीन ने अरब की जमीनों पर खराज मुकरर नहीं फरमाया। मालूम हुआ ये उशरी जमीनें हैं भाई, जबकि सवाद इराक पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के मशवरे से खराज मुकरर फरमाया। इसी तरह मिसर और शाम पर भी खराज मुकरर किया गया भाई। और साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि ये जो सवाद इराक की जमीन है ये उसके रहने वाले जो हैं उन्हीं की ममलूका जमीन है, वो जिस तरह का तसर्रुफ इसमें करना चाहें कर सकते हैं, वो इसको बेचना चाहें या हिबा करना चाहें या रहन रखवाना चाहें, जिस तरह का तसर्रुफ भी वो इसमें करना चाहें वो उनके लिए जायज है। अलबत्ता जो भी इसका मालिक हो इस जमीन से खराज वसूल किया जाएगा भाई। और फिर साहिब हिदाया ने बतलाया था कि कौन सी जमीन उशरी होगी और कौन सी खराजी होगी, तो बतलाया कि वो जमीन के जिसके रहने वाले खुद मुसलमान हो जाएं, या वो जमीन जिसे मुसलमान फतह कर लें और उसे गाजियों के दरमियान तकसीम कर दिया जाए तो ये जमीन उशरी होगी, क्योंकि मुसलमान पर इब्तिदाअन खराज वाजिब नहीं किया जा सकता। जबकि इसके मुकाबले में जिस जमीन को भी मुसलमानों ने कुव्वत बाजू से फतह कर लिया, अलबत्ता उन जमीनों को उन कुफार के पास ही रहने दिया गया तो उन पर खराज मुकरर होगा। और साहिब हिदाया ने फिर जामे सगीर की इबारत भी नकल फरमाई कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जमीन के उशरी या खराजी होने का ताल्लुक पानी से है, क्योंकि पानी के जरिए जमीन पैदावार देती है। तो अगर मुसलमान की जमीन है लेकिन उसको खराजी पानी के जरिए सैराब किया जाता है तो इस जमीन पर खराज आएगा। और खराजी पानी कौन सा होगा, साहिब हिदाया ने वो भी बयान फरमाया कि वो नहरें जो अजमी बादशाहों ने खुदवाई और जो अजमी बादशाहों की ममलूका हैं, उन नहरों के जरिए अगर मुसलमान अपनी जमीन को सैराब करता है तो फिर उसके अंदर खराज आएगा। हासिल कलाम यह कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक मुसलमान की जमीन में इब्तिदाअन उशर ही आएगा, इल्ला यह कि मुसलमान खुद कोई ऐसा अमल कर दे जिसकी वजह से खराज आ जाए, यानी उस जमीन को वह खराजी पानी के जरिए सैराब करे, तो फिर खराज वाजिब होगा। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि पानी का एतबार नहीं है बल्कि उस जमीन के हय्यिज का एतबार है। मैंने बतलाया था हय्यिज का माना है जगह, यानी मुराद है उसके आसपास की जगह, कि जो जमीन उसके आसपास की जमीनें अगर खराजी हैं तो यह जमीन चाहे इसको मुसलमान ही क्यों ना आबाद करे फिर भी उस पर खराज आएगा, और अगर आसपास की जमीनें उशरी हैं तो यह जमीन जिसको मुसलमान आबाद करे इस पर भी उशर आएगा। और यह भी मैंने आपको बतलाया था कि फतवा इमाम अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह के कौल पर है, मुसलमान की जमीन पर इब्तिदाअन उशर वाजिब होगा या खराज, इसके अंदर उसके आसपास की जमीनों को देखा जाएगा। और यह मसला भी आपको मैंने बतलाया था कि खराजी जमीन हमेशा खराजी ही रहेगी, चाहे मुसलमान ही क्यों ना उसको खरीद ले फिर भी वो खराजी ही रहेगी, जबकि उशरी जमीन को अगर काफिर खरीद लेगा तो वो खराजी जमीन बन जाएगी। मालूम हुआ खराजी जमीन तो उशरी नहीं बन सकती, अलबत्ता उशरी जमीन खराजी बन सकती है। भाई बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। قال والخراج الذي وزعه عمر رضي الله تعالى عنه على أهل السواد من كل جريب يبلغه الماء قفيز هاشمي। भाई यहां से साहिब हिदाया खराज की मकदार बयान फरमाएंगे। भाई खराज की मकदार आपको बतलाएंगे कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाद इराक की जमीनों पर जो खराज मुकरर फरमाया था वो जमीनों के एतबार से मुख्तलिफ था, यानी अगर जमीन आला किस्म की है और आला पैदावार देती है, कीमती पैदावार देती है, तो उस पर खराज भी ज्यादा मुकरर किया गया, और जो जमीनें जरा कम दर्जे की थी और उनकी पैदावार कम दर्जे की थी और उनमें मेहनत ज्यादा थी तो उनका खराज भी कम मुकरर किया गया। चुनांचे आपको बतलाएंगे के तीन किस्म की जमीनें थी। भाई बाज जमीनों के अंदर फसलें काश्त की जाती थी और फसलों के काश्त करने में तो मेहनत ज्यादा होती है, लिहाजा उन पर खराज भी कम मुकरर किया गया। और कुछ जमीनें वो थी जिनके अंदर सब्जियां काश्त की जाती थी और सब्जियों के अंदर तो मेहनत कम होती है और नफा ज्यादा होता है, तो उन पर निस्बतन थोड़ा ज्यादा खराज मुकरर किया गया। और कुछ वो जमीनें थी जहां मेहनत बहुत ही कम थी, जैसे अंगूर के या खजूर के घने बागात। भाई अंगूर और खजूर के घने बागात, वहां किसी मेहनत की जरूरत नहीं, या मेहनत है भी तो बहुत थोड़ी मेहनत है, वहां सिर्फ देखभाल की जरूरत है, तो इसलिए इन पर खराज भी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ज्यादा मुकरर फरमाया। भाई तो कहते हैं قال صاحب قدوري فرماتے ہیں والخراج الذي وضعه عمر رضي الله تعالى عنه اور وہ خراج جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مقرر فرمایا على اهل السوادی سواد عراق والوں پر من كل جریب ہر ایسے جریب میں يبلغه الماء جس کو پانی پہنچتا ہو۔ دیکھو جریب ہے نکرہ اور يبلغه الماء یہ اس کے بعد فعل آ رہا ہے اور نکرہ کے बाद फेल आए तो उसके लिए सिफत बनता है और मौसूफ सिफत का तर्जमा के मौसूफ से पहले ऐसा या ऐसी का लफ्ज ले आते हैं। कहते हैं ये मिन कुल्ली जरीबी यब लुगुहुल माऊ, हर ऐसे जरीब में जिसको पानी पहुंचता हो, तो हर ऐसी जमीन के अंदर कफीज उन हाशिमी युन, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला उन्होंने एक हाशिमी कफीज मुकरर फरमाया, वह हुआ साऊ व दिरहम उन, और वो एक सा और दिरहम है। भाई यहां जरीब का जिक्र आया, पहले जरीब समझ लीजिए। याद रखो ये जो जमीन की पैमाइश की जाती है ये मुरब्बा फुट या मुरब्बा गज के एतबार से की जाती है। मुरब्बा फुट का माना यह है कि जमीन का वो टुकड़ा जिसकी लंबाई भी एक फुट हो और चौड़ाई भी एक फुट हो। जमीन का छोटा सा टुकड़ा जिसकी लंबाई भी एक फुट चौड़ाई भी एक फुट, यानी एक फुट का एक चौकोर डब्बा सा बन गया, यह है मुरब्बा फुट, यानी चारों तरफ से इसकी लंबाई एक एक फुट है। तवज्जो है, तो इसको क्या कहते हैं मुरब्बा फुट। या या गजों के एतबार से जमीन की पैमाइश होती है तो मुरब्बा गज कहेंगे, यानी जमीन का ऐसा टुकड़ा जिसकी लंबाई भी एक गज है और चौड़ाई भी एक गज है, यानी जमीन का ऐसा चौकोर डब्बा नुमा टुकड़ा जिसकी चारों तरफ से लंबाई एक एक गज है, तो इसको क्या कहेंगे? मुरब्बा गज। भाई बात समझ में आ गई। तो जमीन की जो बैउ शीरा की जाती है वो उसके रकबे के एतबार से की जाती है और उसको मुरब्बा गजों में या मुरब्बा फुटों में बयान किया जाता है। मसलन एक जमीन है, उसकी लंबाई भी 10 फुट है और चौड़ाई भी 10 फुट है, तो अब इसका रकबा कितना है? तो उसके तरीका यह है कि लंबाई को चौड़ाई से जरब दे दी जाती है। तो इस जमीन की लंबाई भी 10 फुट, चौड़ाई भी 10 फुट, तो 10 को 10 से जरब दी, 10 जरबे 10 ये बराबर है 100। तो यूं कहेंगे ये जमीन 100 मुरब्बा फुट की है
जी।
ये जमीन जिसकी लंबाई भी 10 फुट है, चौड़ाई भी 10 फुट है, यह 100 मुरब्बा फुट है। यानी एक एक फुट वाले चौकोर डब्बे निकालें तो इस जमीन में 100 डब्बे बन जाएंगे। ऐसे तवज्जो है। तो 100 मुरब्बा फुट का क्या माना है कि इसके अंदर एक एक मुरब्बा फुट वाले 100 टुकड़े मौजूद हैं। भाई तो अब ये जरीब जो है ये कितनी जमीन होती थी? याद रखो, उलमा फरमाते हैं कि जरीब की लंबाई 60 जिरा होती थी और चौड़ाई भी 60 जिरा। यानी ऐसी जमीन जिसकी लंबाई भी 60 जिरा हो और चौड़ाई भी 60 जिरा हो उसको जरीब कहते थे। अब जिरा किसे कहते हैं आप पढ़ चुके हैं भाई, याद रखो, 6 जौ के दाने चौड़ाई में एक दूसरे के साथ रखे जाएं तो ये चौड़ाई बनती है एक असबुअ की। असबुअ यानी उंगली। 6 जौ के दाने एक दूसरे के साथ चौड़ाई में रखे जाएं तो ये एक उंगली के बराबर चौड़ाई बन जाती है, और 24 उंगलियों की चौड़ाई हो तो ये बनता है एक जिरा। भाई ये जो इंसानी हाथ है तो कोहनी से लेकर उंगली के सिरे तक ये एक जिरा है। भाई मुतवस्सित दर्जे का इंसान हो तो उसकी कोहनी से लेकर उंगली के सिरे तक ये जो लंबाई है इसको जिरा कहते हैं, और याद रखो ये 1.5 फुट के बराबर है। पूरा 1.5 फुट है, ये कितना है? पूरा 1.5 फुट है। तो ये है एक जिरा, और याद रखो इस जिरा की लंबाई 24 उंगलियों के बराबर है, यानी 24 उंगलियां चौड़ाई में एक दूसरे के साथ रखें तो ये एक जिरा बनता है। तवज्जो है। लेकिन यहां जो जिरा आया कि जरीब कितना है, 60 जिरा जरबे 60 जिरा, इस जिरा से आम जिरा नहीं मुराद बल्कि मलिके किसरा का जिरा मुराद है, और मलिके किसरा का जो जिरा था वो इस आम जिरा से 4 उंगली चौड़ाई में ज्यादा था
जी।
भाई देखिए, ये एक जिरा में 24 उंगलियां हैं, यानी आप अपनी मुट्ठी बंद करें तो देखो इस मुट्ठी की चौड़ाई 4 उंगलियां हैं। मुट्ठी में कितनी उंगलियां हैं? 4। तो इस मुट्ठी की चौड़ाई हो गई 4 उंगलियां। इस मुट्ठी के ऊपर आप एक और मुट्ठी रखें तो ये हो गई 8 उंगलियां। इस तरह आप 6 मुट्ठियां एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये एक जिरा बन जाएगा। तो एक जिरा के अंदर एक जिरा की लंबाई जो है वो 6 मुट्ठी के बराबर है, और हर मुट्ठी में 4 उंगलियां हैं तो 6 चौके 24, तो एक जिरा की लंबाई 24 उंगलियों के बराबर है। भाई जबकि मलिक किसरा का जो जिरा था वो 7 मुट्ठियों के बराबर था। 7 मुट्ठियां एक दूसरे के ऊपर रखें यानी 7 चौके 28, यानी वो 28 उंगलियों की चौड़ाई के बराबर था। भाई तो यहां पर जिरा से वो मलिके किसरा का जिरा मुराद है। भाई तो जरीब कितनी जमीन थी? 60 जिरा चौड़ाई हो और 60 जिरा ही लंबाई हो, और जिरा भी मलिके किसरा का हो। भाई तो इस पर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला उन्होंने ऐसा जरीब और जिसको पानी भी पहुंचता हो इस पर आपने खराज मुकरर फरमाया उस जमीन के एतबार से। अगर वो आम फसलें उस जमीन पर काश्त की जाती हैं तो उस पर 1 सा और 1 दिरहम मुकरर फरमाया। 1 सा और 1 दिरहम। भाई यानी जो पैदावार हासिल हो उस जमीन से, या गंदुम या जौ का 1 सा, तवज्जो है, ये जो एक जरीब जमीन थी, अगर ये आम जमीन है और इस पर फसलें काश्त की जाती हैं भाई, तो इसके अंदर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने एक सा और एक दिरहम मुकरर फरमाया। अब एक सा से क्या मुराद है, उलमा बयान फरमाते हैं कि माना यह है इस जमीन से जो पैदावार हासिल हुई है एक सा वो पैदावार ले ली जाए। सा एक पैमाना था भाई, तवज्जो है, सा एक पैमाना था जिसके अंदर ये गल्ले वगैरह की पैमाइश की जाती थी। आजकल तो गल्ले वगैरह का वजन किया जाता है, लेकिन अब भी दुनिया के बाज हिस्सों में राइज है गल्ले वगैरह को बर्तन में उसकी पैमाइश करते हैं, तवज्जो है, और उस बर्तन को सा कहते हैं भाई सा। और यह भी याद रखना, यह भी याद रखना कि सा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तीन किस्म के सा इस्तेमाल होते थे। एक को साए हाशिमी कहते हैं, एक को साए हिजाजी कहते हैं, और एक को साए हैराकी कहते हैं। साए हाशिमी सबसे बड़ा था और साए हाशिमी जो है वो 32 रितल का था, रा त्वा और लाम रितल। साए हाशिमी 32 रितल का था और यह भी याद रखना एक रितल जो है वो 34 तोले के बराबर होता है। एक रितल 34 तोले के बराबर होता है, तो 32 रितल का एक साए हाशमी था, ये सबसे बड़ा सा था। इससे छोटा सा जो था वो साए इराकी के नाम से मशहूर था और वो 8 रितल का था। 8 रितल मालूम हुआ, 4 साए इराकी मिलेंगे तो एक साए हाशमी बनेगा। साए हाशमी इतना बड़ा था, तो साए हाशमी 32 रितल का था और साए इराकी 8 रितल का था। और सबसे छोटा जो सा था वो 5 रितल और सुलु से रितल का था। 5 रितल और सुलु से रितल यानी रितल का तीसरा हिस्सा। तो ये सबसे छोटा सा था और इसको साए हिजाजी कहा जाता है। अब इसमें उलमा का इख्तिलाफ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मदीना मुनव्वरा में कौन सा सा राइज था। इंदल अहनाफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मदीना मुनव्वरा में साए इराकी राइज था, यानी वो जो 8 रितल का होता है, 8 रितल का होता है, तो वो हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में राइज था। तो बात चल रही थी कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने जो आम फसल वाली जमीन है उसके एक जरीब के अंदर एक सा और एक दिरहम मुकरर फरमाया। अब सा से क्या मुराद है, उलमा फरमाते हैं कि सा से मुराद वो जो पैदावार इस जमीन से हासिल होती है उसी का, उसी पैदावार का एक सा ले लिया जाएगा। एक सा यानी 8 रितल मकदार भी ले लेंगे और साथ एक दिरहम भी वसूल कर लिया जाएगा। यह पूरे साल के लिए वसूल हो जाएगा एक ही मर्तबा इस जमीन से। तो सा से क्या मुराद है, वही पैदावार जो इस जमीन से हासिल हुई। जबकि बाज उलमा फरमाते हैं कि सा से मुराद है गंदुम या जौ का एक सा, यानी ये जो जरीब है जो भी फसल वो इसमें काश्त करे लेकिन उससे एक दिरहम और एक सा गंदुम या जौ का ले लिया जाएगा। यह है इस जमीन का खराज पूरे साल के लिए भाई, तवज्जो है। और यह भी याद रखना खराज पूरे साल में एक ही दफा वसूल किया जाता है, चाहे वो शख्स इस जमीन से जितनी भी फसलें हासिल करे लेकिन खराज एक ही दफा वसूल किया जाएगा। यह तो थी अदना दर्जे की जमीनें सवादे इराक में, और दूसरे आला दर्जे की जमीनें जिनके अंदर लोग सब्जियां काश्त करते थे उन पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने 5 दिरहम मुकरर फरमाए। उनका सालाना खराज कितना है, 5 दिरहम, क्योंकि उसमें मेहनत कम है और फायदा ज्यादा है, तो लिहाजा खराज भी थोड़ा ज्यादा मुकरर किया गया। जबकि सबसे आला पैदावार और कम मेहनत जो है वो बागात के अंदर होती है, बाग के अंदर दरख्त वगैरह तैयार होते हैं, सिर्फ उनकी देखभाल करना पड़ती है, तो लिहाजा उन पर खराज भी ज्यादा मुकरर फरमाया। चुनांचे जो अंगूर के घने बागात थे या जो खजूरों के घने बागात थे उनका खराज पूरे साल के लिए 10 दिरहम मुकरर किया गया। तवज्जो है, तो उनका खराज 10 दिरहम मुकरर किया गया। यहां तक बात समझ में आ गई, जरीब का भी आपको पता चल गया, कफीज हाशमी का इबारत में जिक्र आ रहा था उसका भी आपको पता चल गया। अब फिर तर्जमा देख लीजिए, काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वल खराज उल्लदी वजाहू उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, और वो खराज हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुकरर फरमाया अला अहलि सवादी सवाद इराक वालों पर मिन कुल्ली जरीबी यबलुगुहुल माउ, हर ऐसा जरीब जिसको पानी पहुंचता हो उसमें कफीज उन हाशमी उन, एक कफीज हाशमी खराज जो है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुकरर फरमाया। तवज्जो है, याद रखो कफीज या सा एक ही चीज को कहते हैं
जी।
उसी पैमाने को कफीज भी कहते हैं और उसी को सा भी कहते हैं भाई। तो यहां बाज शारहीन एतराज करते हैं कि इंदल अहनाफ कफीज इराकी मोतबर है, क्योंकि हमारे नजदीक हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में कफीज इराकी जो है वो राइज था मदीना मुनव्वरा में। तो फिर साहिब हिदायत ने कफीज हाशिमी कैसे जिक्र फरमाया, तो एतराज समझ में आया। लिहाजा वो कहते हैं साहिब हिदाया को यह हाशिमी का लफ्ज साथ जिक्र नहीं करना चाहिए था, और अगर जिक्र करना चाहते थे तो कफीज इराकी को जिक्र करना चाहिए था। जबकि बादशारहीन ने और जवाब दिया, वो कहते हैं कि ये जो कफीज हाशिमी से आगे आ रहा है वह हुआ साउवा दिरहमुन, वह हुआ साउवा दिरहमुन, ये इसी कफीज हाशिमी की तफसीर बयान की जा रही है। माना यह है एक सा और एक दिरहम, और सा से मुराद साए इराकी है। यहां जो इबारत में सा का लफ्ज आया वह हुआ सा, इससे क्या मुराद है, साए इराकी, यानी एक साए इराकी होता आठ रितल वाला और साथ एक दिरहम ले लिया जाता
जी।
एक साए इराकी और एक दिरहम, ये कितना था, ये कितना बनता था, उसी कफीज हाशमी के बराबर बनता था भाई। बात समझ में आ गई। तो वो खराज हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया हर जरीब के अंदर कफीज उन हाशिमी उन, वो हाशिमी कफीज था वह हुआ साउ व दिरहम उन, और वो एक सा और एक दिरहम है। कफीज हाशिमी एक साए इराकी और एक दिरहम है। वमिन जरीब रतबति खमसतु दराहिमा, रतबा भाई रा के फतहा के साथ ये सब्जी को कहते हैं। वमिन जरीब रतबति खमसतु दराहिमा, और सब्जियों के एक जरीब के अंदर पांच दिरहम खराज मुकरर फरमाया। वमिन जरीब इल्कर्मिल मुत्तसिली वन नखील इल मुत्तसिली अशरतु दराहिम, कर्म भाई करम भाई करम रा के फतहा के साथ हो तो ये इसके माने सखावत और फयाजी के हैं। आप बाप भी पढ़ चुके हैं करुम यक्रुमो करम व करामतन, लेकिन अगर कर्म रा के सुकून के साथ हो कर्म, तो ये अंगूर को और अंगूर की बेल को कहते हैं। याद रखो ये जो अंगूर है इसका दरख्त नहीं होता, इसकी बेल होती है जो जमीन पर फैली हुई होती है। लेकिन जब बागात के अंदर ये अंगूर लगाए जाते हैं तो फिर वहां इसके लिए उनके लिए यानी ऊंची चीजें नसब कर दी जाती हैं, जैसे लकड़ियां वगैरह और बांस, और उन पर बेलों को फैलाया जाता है। तो ये बेलें उस बाग के अंदर उन लकड़ियों पर दीवारों की तरह फैली हुई होती हैं भाई। और इसी तरह नखील का लफ्ज आ रहा है इबारत में। नखील याद रखो ये जमा है नखलतुन की, नखलह जो है वो खजूर के दरख्त को कहते हैं और इसकी जमा है नखील भाई। और नीज मतन में आया वमिन जरीबिल कर्मिल मुत्तसिली, मुत्तसिल का माना है जुड़े हुए, यानी अंगूर की वो बेलें जो आपस में जुड़ी हुई हों, या इसी तरह वन नखील मुत्तसिली खजूर के वो दरख्त जो आपस में जुड़े हुए हों। भाई बाज बाग ऐसे होते हैं कि उनमें दरख्त फासले फासले पर होते हैं और नीचे जमीन पर खेती बाड़ी की जाती है और बीच में ये कुछ दरख्त लगे होते हैं, इनसे फल भी हासिल किया जाता है। जबकि कुछ बागात के अंदर सारी जमीन पर जो है खजूर के दरख्त लगे होते हैं, उनमें फासला नहीं होता, दरमियान में काश्त के काबिल जमीन नहीं होती भाई। तो ये है नखील मुत्तसिल भाई, खजूर के वो दरख्त जो आपस में मिले हुए हैं यानी घने बागात हैं, या इसी तरह अंगूर की वो बेलें जो आपस में मिली हुई हैं यानी घना बाग है भाई, दरमियान में काश्त वाली जमीन नहीं। अगर दरमियान में काश्त वाली जमीन है मालूम हुआ दरख्त बहुत थोड़े से हैं, तो फिर उस पर वही खराज आएगा जो फसलों वाली जमीनों पर आता है, यानी एक सा और एक दिरहम। लेकिन अगर घना बाग है जिसमें काश्तकारी नहीं होती बल्कि तमाम बाग जो है अंगूर की बेलों से या खजूर के दरख्तों से भरा हुआ है, तो फिर इसके अंदर सबसे कम मेहनत है, मालिक को सिर्फ हिफाजत करना पड़ेगी और खूब पैदावार हासिल होती है। लिहाजा इनके अंदर 10 दिरहम मुकर्रर फरमाए हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। तो कहते हैं वह मिन जरी बिल करमिल मुत्तसिली व नखील मुत्तसिली, और अंगूर के घने जरीब में से, व नखील मुत्तसिली, और इसी तरह खजूर के जो घने जरीब थे उनके अंदर वो खराज हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने मुकर्रर फरमाया आशारातु दराहिमा, वो 10 दिरहम था भाई। यहां तक बात समझ में आ गई। वहादा हुअल मन, अब दलील भी जिक्र कर रहे हैं। यहां तक तो मतन था कि हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने आम जरीब के अंदर जिसे फसलें हासिल होती हैं उसमें एक सा और एक दिरहम मुकरर फरमाया, सब्जियों के जरीब में 5 दिरहम मुकरर फरमाए, और खजूर और अंगूर के घने बागात के अंदर 10 दिरहम मुकरर फरमाए। यह तो मतन के अंदर इबारत आई। अब साहिब हिदायत दलील जिक्र फरमा रहे हैं भाई। तो कहते हैं वहादा हुअल मनकूल अन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, और यही नकल किया गया है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से। فإنه بعث عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه حتى يمسح سواد العراق, इसलिए क्योंकि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उस्मान इब्ने हुनैफ रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा हत्ता यमसह सवाद अल इराकी, ताकि वो पैमाइश कर लें सवाद इराक की। वजअल हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु मुशरिफन, मुशरिफ कहते हैं निगरान को भाई, निगरान और सरपरस्त। वजअल हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु मुशरिफन, और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान रजी अल्लाह तआला अन्हु को इसका निगरान मुकर्रर फरमाया। तो हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान रजी अल्लाह तआला अन्हु को इस काम का निगरान और सरपरस्त मुकर्रर किया। फम्मा साहा, तो उन्होंने पैमाइश की हजरत उस्मान इब्ने हुनैफ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। फबलगा सित्तन व सलासीना अल्फ अल्फी जरीबिन, तो वो सवाद इराक पहुंचा। सित्तन व सलासीना, सित्तन व सलासीना 36 भाई, और अल्फ अल्फी जरीबिन, अल्फ में कितने सिफर होते हैं 3, और अल्फ अल्फिन में कितने सिफर होंगे 6, तो 36 के साथ 6 सिफर लगा दें तो ये कितना बनेगा 3,60,00,000 जरीब। 3,60,00,000 जरीब, ये आप हिसाब कर लीजिएगा। तो कहते हैं फब्बा लगा सित्तन व सलासीना अल्फ अल्फी जरीबिन, तो वो सवाद इराक की जो जमीन है वो 3,60,00,000 जरीब तक पहुंची, यानी इतनी जमीन थी। वज़ा अला ज़ालिका मा कुलना, और इस जमीन पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुकरर फरमाया मा कुलना, वो जो हमने कहा वो ऊपर मतन में बयान हुआ। वकान ज़ालिका बिमहज़र मिन सहाबती रजी अल्लाह ताला अन्हुम, और ये मुकरर करना सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की मौजूदगी में हुआ था। मिन गैर नकीरिन, बगैर किसी इनकार के, किसी ने इसका, सहाबा में से किसी ने इसका इनकार नहीं किया। फकान इजमाअन मिनहुम, तो ये सहाबा की तरफ से इजमा हुआ, तो ये सहाबा की तरफ से इजमा हो गया था। वली अनल मुआना मुतफावितुन, यहां से अकली दलील भी जिक्र कर रहे हैं कि मुख्तलिफ जमीनों पर ये जो मुख्तलिफ खराज मुकर्रर फरमाया, तो उसकी वजह बतलाएंगे कि भाई ये जमीन के अंदर मेहनत और नफे के एतबार से है, जमीन में मेहनत ज्यादा है और नफा कम है तो फिर खराज कम होगा, और अगर मेहनत कम है और फायदा ज्यादा है तो उस पर खराज ज्यादा होगा, और अगर मेहनत मुतवस्सित दर्जे की है तो खराज भी मुतवस्सित दर्जे का होगा। तो कहते हैं वली अनल मुअना मुतफावितुन, मुअन जमा है मुअनतुन की, और मुअनतुन कहते हैं मशक्कत को, मशक्कत को, और इसी तरह खर्चे को। कहते हैं वली अनल मुअना मुतफावितुन, इसलिए क्योंकि मशक्कत और खर्चा जो है वो मुख्तलिफ है। फलकर मुअखफुहा मुअनतन, तो अंगूर जो हैं वो सबसे हल्के हैं, सबसे कम हैं, मुअनतन खर्चे और मेहनत के एतबार से। वल मजारिउ अक्सरुहा मुअनतन, मजारिउ भाई ये जमा है मजरा की, और मजरातुन ये खेत को कहते हैं, वो जो काश्त के काबिल जमीन होती है। वल मजारिउ अक्सरुहा मुअनतन, और जो खेत हैं वो सबसे ज्यादा हैं मशक्कत और खर्चे के एतबार से। वर रिताबु बैनहुमा, और सब्जियां जो हैं वो इनके दरमियान है, यानी उनमें खर्चा और मशक्कत मुतवस्सित दर्जे की है। वल वजीफतु ततफावतु बितफावतिहा, और वजीफा जो है वो मुख्तलिफ होता है मशक्कतों के मुख्तलिफ होने से। फजुइलल वाजिबु फिल कर्मि आलाहा, तो अंगूर के अंदर आला दर्जे का खराज वाजिब करार दिया गया। वफी ज़रई अदनाहा, और फसल के अंदर कम दर्जे का खराज वाजिब करार दिया गया। वफी रतबति औसतहा, और सब्जियों के अंदर मुतवस्सित दर्जे का खराज वाजिब करार दिया गया। आगे देखिए, काला वमा सिवा ज़ालिका मिनल असनाफी का ज़ाफ़रानी वल बुस्तानी वगैरिही युज़ाउ अलैहा बिहसबित ताका। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं, वमा सिवा ज़ालिका मिनल असनाफी, और इसके अलावा और जो अकसाम हैं का ज़ाफ़रानी, जैसे कि ज़ाफ़रान है, वल बुस्तानी, और जैसे कि बाग है। भाई साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि बुस्तान उस बाग को कहते हैं कि जिसके इर्द गिर्द दीवार हो और इसके अंदर जो है मुतफर्रिक दरख्त हो, मुतफर्रिक किस्म के दरख्त हों, खजूर वगैरह के और चीजों के दरख्त हों, इस किस्म के बाग को बुस्तान कहा जाता है। और देखो इबारत पे नजर रखें, का ज़ाफ़रानी वल बुस्तानी, तो यहां बुस्तान से मुराद तो वो जमीन है, वो बाग है, और मकबल में ज़ाफ़रान का जिक्र है तो मकबल में भी जमीन का जिक्र होना चाहिए, क्योंकि खराज की बात चल रही है और खराज किस पर होता है, जमीन पर। तो यहां जिक्र आया का ज़ाफ़रानी, तो यहां मुजाफ महजूफ है, आई का अर्ज ज़ाफ़रानी, का अर्ज ज़ाफ़रानी। तो कहते हैं काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं, वमा सिवा ज़ालिका मिनल असनाफी, और इसके अलावा जो और किस्में हैं का ज़ाफ़रानी वल बुस्तानी वगैरही, जैसे कि ज़ाफ़रान की जमीन है और बाग वगैरह हैं, युज़ाउ अलैहा बिहसबित ताकती, उन पर खराज मुकरर किया जाएगा उन जमीनों की ताकत के एतबार से, यानी जिस किस्म की जमीनें हैं उसके मुताबिक खराज मुकरर किया जाएगा। लिअन्नहु लैसा फीहि तौज़ीफ़ु उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसलिए क्योंकि इनके अंदर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से मुकरर करना नहीं पाया गया। वकद इतबरत ताकत फी ज़ालिका, और तहकीक हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ताकत का एतबार किया था इस खराज मुकरर करने में, तो हम भी ताकत ही का एतबार करेंगे। तो कहते हैं वकद इतबरत ताकत फी ज़ालिका, और इस वजीफे के मुकरर करने में हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जमीन की ताकत का एतबार किया था। फनाता बिरुहा फीमा ला तौज़ीफ फीही, तो हम भी ताकत का ही एतबार करेंगे उन जमीनों में कि जिनके ऊपर हज़रत उमर की तरफ से कुछ मुकरर करना नहीं है। कालू फुकहा फरमाते हैं, व निहायतु ताकती, और इंतहा दर्जे की ताकत यह है, यानी आखिरी हद यह है कि अय्यब लुगल वाजिबू, कि वो खराज जिसको वाजिब करार दिया गया वो पहुंच जाए निस्फल खारिजी, निस्फ पैदावार तक, ला युजादु अलैही, उससे जायद नहीं किया जाएगा। फुकहा फरमाते हैं कि जमीन की ताकत को देखा जाएगा, लेकिन इंतहा दर्जे का जो खराज वाजिब किया जाएगा वो उस जमीन से हासिल होने वाली निस्फ पैदावार से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए क्योंकि निस्फ पैदावार ऐन इंसाफ है। वजह यह कि मुसलमानों ने इस इलाके को फतह किया था, तो मुसलमान चाहते तो सारी जमीनें इन कुफार से छीन सकते थे, लेकिन उन्होंने जमीनें इन कुफार के पास ही रहने दी, तो लिहाजा अब निसफ हक मुसलमानों का होना चाहिए और निसफ हक इन कुफार का होना चाहिए, यह ऐन इंसाफ है भाई। तो कहते हैं वह निहायतु ताकती, और इंतहा दर्जे की ताकत यह है, अय्यब लुगल वाजिबु निस्फल खारिजी, कि वो खराज वाजिब किया गया वो निस्फ पैदावार तक पहुंच जाए, ला युजादु अलैही, उस पर बढ़ाया नहीं जाएगा। लिअन्न तंसीफ ऐनुल इंसाफी, इसलिए क्योंकि आधा करना यह ऐन इंसाफ है। लिमा कान लना, इसलिए क्योंकि हमारे लिए यह जायज था। अन्नक्सिमल कुल्ल बैनल गानिमीना, कि हम वो सारी जमीनें गनीमत हासिल करने वालों में तकसीम कर देते, लेकिन हमने तकसीम नहीं की, तो अब निसफ ये ले लें और निसफ हमें दे दें। ये इंतहा दर्जा है, तवज्जो है, ये इंतहा है। वल बुस्तानु, अब भाई मतन में बुस्तान का लफ्ज आया था, उसका माना बयान फरमा रहे हैं। वल बुस्तानु कुल्लु अर्ज़िन यहूतुहा हाइतुन, हाता यहूतु का माना है घेरना, और हाइत भाई ये दीवार को कहते हैं। वल बुस्तानु कुल्लु अर्ज़िन, और बुस्तान जो है हर ऐसी जमीन है, यहूतुहा हाइतुन, जिसको कोई दीवार घेर ले, यानी जिसके गिर्द कोई दीवार हो। वफीहा नखीलुम मुतफर्रिकतुन, और उसके अंदर मुतफर्रिक खजूर के दरख्त हों। व अशजारुन उखरू, और दूसरे दरख्त हों। वफी दियारीना वज़्ज़फू, यहां से साहिब हिदायत अपने इलाके में खराज के बारे में बयान फरमा रहे हैं कि हमारे इलाके में खराज जो है वो तमाम जमीनों से दिरहमों के अंदर ही वसूल किया जाता है। किसमें? दिरहमों में। हालांकि हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला ने अदना दर्जे की जमीनों में एक सा और दिरहम मुकरर फरमाया था, लेकिन हमारे यहां सबसे दिरहमों में ही वसूल किया जाता है। लेकिन कहते हैं फुकहा ने इसको इसी तरह रहने दिया, यानी किसी ने इसका रद्द नहीं किया, किसी ने इसका इनकार नहीं किया, इसलिए क्योंकि असल एतबार जमीन की ताकत का है, फिर जिस सूरत में भी उसको अदा कर दिया जाए। भाई तो कहते हैं वफी दियारीना वज़्ज़फू मिनत दराहिमी, और हमारे इलाकों के अंदर दिरहमों में मुकरर किया है। फिल आराजी कुल्लिहा, तमाम जमीनों में। वतुरिका का जालिक, और इसको इसी तरह छोड़ दिया गया, यानी फुकाहा में से किसी ने भी इस पर एतराज नहीं किया। लिअन्न तकदीर यजिबु अन यकून बिकद्री ताकति, इसलिए क्योंकि मुकरर करना वो वाजिब है कि वो जमीन की ताकत के बकदर हो। मिन अय्यि शैइन काना, जिस चीज के जरिए भी हो, लेकिन जमीन के ताकत के बकदर होना चाहिए। आगे देखिए, काल फइल्लम तुतिक मा वुज़िअ अलैहा नक़सहुमुल इमाम, भाई जमीन वालों पर खराज मुकरर किया गया, लेकिन वो खराज उन जमीन वाले आकर कहते हैं ये खराज हमारे लिए ज्यादा है, हमारी जमीन इतनी पैदावार नहीं देती जितना हम पर खराज मुकरर किया गया है, तो क्या इमाम खराज में कमी कर सकता है? कहते हैं हां, इमाम खराज में कमी कर सकता है। तो कहते हैं काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं फइल्लम तुतिक मा वुज़िअ अलैहा, अगर वो जमीन ताकत नहीं रखती उस खराज की जो इस पर मुकरर किया गया है, न कसहुमुल इमाम, तो इमाम उनके लिए उसको कम कर देगा। वन नुकसान इंद किल्लति रै जाइज़ुम बिल इजमाई, और कमी करना इंद किल्लति रै, रै उन बैये नफे और फायदे को कहते हैं, और यहां मुराद है पैदावार, क्योंकि जमीन का नफा और फायदा क्या है? पैदावार। तो पैदावार कम हो तो फिर खराज कम किया जा सकता है। कहते हैं वन नुकसान इंद किल्लति रै, और पैदावार के कम होने की सूरत में कमी करना, जाइज़ुम बिल इजमाई, ये बिल इजमा जायज है। अल्लाह तारा इला कौल उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, क्या आप देखते नहीं हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के कौल की तरफ? भाई हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यह सहाबा को भेजा, भाई उस्मान इब्ने हुनैफ और हुज़ैफा इब्ने यमान रजी अल्लाह तआला अन्हु को, और फिर ये वो खराज मुकरर करके आए कि हमने आम जमीनों पर हमने एक सा और दिरहम मुकरर किया है, सब्जियों पर हमने पांच दिरहम मुकरर किए हैं, और घने बागात पर हमने दस दिरहम मुकरर किए हैं। तो हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाने लगे, शायद तुमने ज्यादा ना मुकरर कर दिया हो, कहीं जमीन में इसकी ताकत ही ना हो। कहते हैं नहीं, बल्कि जमीन में जितने की ताकत थी हमने वो मुकरर किया है, बल्कि अगर हम इस खराज को बढ़ाना चाहते तो जमीन उसकी भी ताकत रखती थी। मालूम हुआ उस वो जमीन इससे भी ज्यादा की ताकत रखती थी, लेकिन फिर भी कम मुकरर किया गया। मालूम हुआ कमी बिल इत्तेफाक जायज है, मालूम हुआ कमी बिल इत्तेफाक जायज है। कहते हैं अल्लाह तारा इला कौल उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, क्या आप हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के कौल की तरफ नहीं देखते कि उन्होंने फरमाया लअल्लकुमा हम्मलतुमल अर्ज़ा, लअल्लकुमा हम्मलतुमल अर्ज़ा, शायद तुमने जमीन पर बोझ डाल दिया हो, मा ला तुतीकू, जिसकी वो जमीन ताकत नहीं रखती, शायद तुमने जमीन पर इतना बोझ डाल दिया हो कि जमीन उसकी ताकत नहीं रखती। फकाला, तो वो दोनों यानी हजरत उस्मान इब्ने हुनैफ और हज़रत हुज़ैफ़ा इब्ने यमान रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाने लगे, ला कि नहीं, बल हम्मलना हा मा तुतीकू, बल्कि हमने उस जमीन पर उतना बोझ डाला है जिसकी वो ताकत रखती है, वलौ जिद ना हा, अगर हम उस जमीन पर और भी खराज बढ़ा देते, ला ताकत, तो जमीन उसकी भी ताकत रखती थी। वहां जायदुल्लु अला जवाज नुकसानी, और यह दलालत करता है कमी के जायज होने पर, यानी जमीन और भी ताकत रखती थी लेकिन हमने उतना मुकरर नहीं किया, मालूम हुआ कमी करना जायज है। तो कहते हैं वहादा यदुल्लु अला जवाज इन नुकसानी, तो उनका यह कौल जो है ये कमी के जायज होने पर दलालत करता है। वह अम्मा ज़ियादतु इंदा ज़ियादति रई, और बाकी खराज के अंदर ज्यादती करना पैदावार की ज्यादती के वक्त, भाई अगर पैदावार ज्यादा है तो खराज तो कम मुकर्रर किया जा सकता है, लेकिन अगर पैदावार ज्यादा हो जाए तो क्या खराज बढ़ाया जा सकता है? तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं हां खराज बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं नहीं, खराज नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को खबर भी दी गई कि अगर हम और भी खराज मुकर्रर करना चाहते तो जमीन उसकी भी ताकत रखती थी, लेकिन फिर भी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खराज नहीं बढ़ाया, मालूम हुआ इससे ज्यादा बढ़ाना जायज नहीं है भाई। तो कहते हैं वह अम्मा ज़ियादतु इंदा ज़ियादति रई, और बाकी खराज की ज्यादती पैदावार की ज्यादती के वक्त, यजूज़ इंदा मुहम्मदिन रहिमहुल्लाह, ये इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक जायज है, एतबारम बिन नुकसानी, कमी पर कियास करते हुए। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं जैसे कमी करना जायज है इसी तरह खराज को बढ़ाना भी जायज है, तो ये माना है एतबारम बिन नुकसानी, कमी पर कियास करते हुए। वइंदा अबी यूसुफ रहिमहुल्लाह, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से रिवायत है, ला यजूज़ के ज्यादती जायज नहीं है, लिअन्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु लम यजिद, क्योंकि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने और ज्यादा नहीं किया, हीन उखबिरा बि ज्यादती ताकती, जब उनको ज्यादा ताकत की खबर दी गई फिर भी उन्होंने खराज को नहीं बढ़ाया, मालूम है इससे ज्यादा बढ़ाना जायज नहीं है भाई। आगे देखिए, व इन गलबा अला अर्ज़िल खराजिल माउ अव इन क़ता अल माउ अन्हा अव इस्तलमा ज़रअ आफ़तुन फला खराज अलैह। यहां से साहिब हिदाया बयान फरमाएंगे कि किन चीजों की वजह से खराज साकित होगा और किन चीजों की वजह से खराज साकित नहीं होगा। याद रखो, आपको बतलाएंगे कि अगर जमीन पर पानी गालिब आ गया, यानी बाज़ ज़मीनें आप जानते हैं उनमें सेम आ जाता है, जमीन के अंदर पानी ज्यादा हो जाए, ऊपर सतह के करीब आने लगता है, और फिर उस जमीन पर नमकियात भी बहुत ज्यादा फैल जाते हैं सफेद रंग के भाई, तो अगर जमीन इस तरह हो जाए कि उस पर पानी आ गया है, या दूसरी सूरत है पानी बिल्कुल ही उस जमीन से कट गया भाई और पैदावार खत्म हो जाए, अब उस जमीन से पैदावार नहीं हासिल होती, तो इस सूरत में याद रखो खराज भी साकित हो जाएगा। या इसी तरह जमीन से पैदावार तो हासिल होती है लेकिन कोई कुदरती आफत आई और पैदावार जाया हो गई, तबाह हो गई, मसलन फसल काश्त की थी लेकिन शदीद बारिश हुई सारी फसल खराब हो गई, या ओले पड़े और सारी फसल खराब हो गई, तो इस सूरत के अंदर भी खराज साकित हो जाएगा। तो कहते हैं वह इन गलबा अला अर्ज़िल खराजिल माउ, और अगर खराजी जमीन पर पानी गालिब आ गया, अब इन कताल माउ अनहा, या खराजी जमीन से पानी मुनकते हो गया, कट गया, अब इस पलमा जरा आफतुन, इस पलमा यस्पलिमु के माने हैं तबाह करना, खत्म करना, अब इस पलमा जरा, या उस फसल को तबाह कर दिया, आफतुन किसी आफत ने, फला खराज अलैही, तो इस सूरत में उस पर कोई खराज नहीं होगा, लिअन्नहु फात तमक्कुनु मिन ज़राअती। भाई याद रखो, साहिबे हिदाया आपको बतलाएंगे कि उशर के अंदर हकीकी पैदावार हासिल होगी तो उसमें से दसवां हिस्सा दिया जाएगा, और अगर मेहनत और खर्चा ज्यादा है तो फिर निस्फ उशर दिया जाएगा। तो उशर के अंदर हकीकी पैदावार का हासिल होना जरूरी है उशर के लिए, जबकि खराज के अंदर पैदावार को नहीं देखेंगे, पैदावार पर कुदरत को देखेंगे, यानी काश्त पर कुदरत को देखेंगे। अगर एक आदमी एक जमीन पर काश्त करने पर कादिर है तो फिर उस जमीन पर खराज आएगा, चाहे वो आदमी कुछ काश्त करे या ना करे, हर हाल में खराज आएगा। तवज्जो है, मालूम हुआ कि खराज के अंदर हकीकी पैदावार का एतबार नहीं है बल्कि पैदावार पर कुदरत का एतबार है। पैदावार पर या यूं कहो तकदीरी पैदावार का एतबार है। किसका? उशर में हकीकी पैदावार और खराज में तकदीरी पैदावार, यानी पैदावार को फर्ज किया जा सके। तकदीर का क्या माना? कदर युकदीर। तकदीर का माना फर्ज करना, यानी पैदावार को फर्ज किया जा सके। ऐसी जमीन है कि उससे पैदावार हासिल की जा सकती है तो उस पर खराज आएगा, चाहे उससे पैदावार हासिल करे वो शख्स या हासिल न करे, उसे खराज देना पड़ेगा। तो कहते हैं लिअन्नहू फातत तमक्कुनु मिनज़ ज़राअती, इसलिए क्योंकि काश्त पर कुदरत फौत हो गई। तमक्कुन का माना कादिर होना। लिअन्नहू फातत तमक्कुनु मिनज़ ज़राअती, इसलिए क्योंकि काश्त पर कुदरत फौत हो गई। जमीन का पानी बिल्कुल ही खुश्क हो गया, या जमीन पर पानी ज्यादा आ गया, अब उसमें फसल काश्त हो ही नहीं सकती, या कोई आफत आई तो सारी फसल तबाह हो गई। तो इस सूरत में काश्त पर कुदरत यानी पैदावार पर कुदरत खत्म हो गई। कहते हैं लिअन्नहू फातत तमक्कुनु मिनज़ ज़राअती, इसलिए क्योंकि ज़राअत पर कुदरत फौत हो गई। भाई ज़राअत पर कुदरत, तवज्जो है ये इबारत पे नजर रखना, ज़राअत पर यानी काश्त पर कुदरत फौत हो गई। काश्त पर कुदरत ये किसे कहते हैं? काश पर कुदरत। कहते हैं वह हुआ नमा उत्तकदीरी युल मोतबरु फिल खराजी, हुआ हुआ नमा उत्तकदीरी यो, वो पैदावार है। नमा अफजाइश और बढ़ोतरी, और जमीन में क्या बढ़ोतरी होती है, क्या अफजाइश होती है? फसल की। तो ये पैदावार मुराद है। कहते हैं वह हुआ नमा उत्तकदीरी यो, और वो तकदीरी नमा है, तकदीरी पैदावार है। अल मोतबरु फिल खराजी, जो खराज में मोतबर है, वो तकदीरी पैदावार यानी वो फर्जी पैदावार, यूं कहो वो फर्जी पैदावार जो खराज में मोतबर है। खराज में हकीकी पैदावार को नहीं देखा जाएगा बल्कि फर्जी पैदावार को देखा जाएगा। और फर्जी पैदावार किसे कहेंगे? कि जब काश्त पर कुदरत है। जब काश्त पर कुदरत है तो गोया पैदावार भी हासिल है, जब पैदावार हासिल है तो खराज देना पड़ेगा भाई। तो कहते हैं वह हुआ नमा उत्तकदीरी युल मोतबरु फिल खराजी, और वो तकदीरी पैदावार है। अल मोतबरु फिल खराजी, जो खराज के अंदर मोतबर है। वफीमा इदस कलम जरा आफतुन, हां यूं करें, ये जो पहले दलील जिक्र की, पहले दलील जिक्र की लिअन्नहू फातत तमक्कुनु मिनज़ ज़राअती, इसलिए क्योंकि काश्त पर कुदरत फौत हो गई। वह हुआ नमा उत्तकदीरी युल मोतबरु फिल खराजी, और काश्त पर कुदरत वो तकदीरी पैदावार है जिसका खराज में एतबार किया जाता है। इसको जोड़ें सिर्फ पहली दो सूरतों से, जब जमीन पर पानी बढ़ गया या जमीन से पानी मुनक़ति' हो गया, तो आप यहां पर फर्जी पैदावार हासिल नहीं, पैदावार हो ही नहीं सकती यहां पर, तो फर्जी पैदावार भी यहां नहीं हो सकती, और उसी का तो एतबार है। और आफत की वजह से फसल तबाह हो गई, उसकी दलील अब आगे जिक्र कर रहे हैं। वफीमा इदस्तलम जरा आफतुन, और उस सूरत में कि जब खेती को, फसल को आफत ने तबाह कर दिया। फातन नमा उत्तकदीरी युफी बाजिल हौली, उसके अंदर वो तकदीरी नमा, जो तकदीरी पैदावार जो है वो फौत हो गई। फी बाजिल हौली, बाजे साल के अंदर। हौल क्या माना? साल। जब भाई खेती तबाह हो गई तो साल के कुछ हिस्से के अंदर तकदीरी नमा खत्म हो गई, तकदीरी नमा न रही भाई। तो कहते हैं, फिर तर्जमा देख लीजिए, वफीमा इदस्तलम जरा आफतुन, और उस सूरत के अंदर के जब उस फसल को आफत ने तबाह कर दिया। फातन नमा उत्तकदीरी युफी बाजिल हौली, तो साल के कुछ हिस्से के अंदर वो नमाए तकदीरी फौत हो गई। वकौनुहु नामियन फी जमीइल हौली शर्तुन, और उस जमीन का नामी होना सारे साल के अंदर यह शर्त है। खराज उसी जमीन पर आएगा जो जमीन सारा साल नामी हो, यानी पैदावार देने वाली हो, तो उस जमीन का सारे साल के अंदर नामी होना शर्त है। कमाफी माल जकात ही, जैसे कि माल जकात के अंदर है, जकात भी उसी माल पर आएगी जो सारा साल नामी रहे, जो सारा साल नामी रहे। भाई देखिए, जकात आती है, जकात आती है सोने चांदी पर, करंसी पर, और इसी तरह माले तिजारत पर। माले तिजारत पर। और इसी तरह याद रखो किसी के जिम्मे कर्जा है उसे लेना है या देना है उसको भी हिसाब किया जाएगा माल के अंदर। तो बहरहाल जकात आती है सोना चांदी करंसी और माले तिजारत के अंदर। अब एक आदमी ने एक गाड़ी खरीदी है बेचने की नीयत से, तो इस पर जब साल पूरा होगा तो इसकी भी जकात अदा करना पड़ेगी क्योंकि उसने तिजारत की नीयत से खरीदी है, यह माले तिजारत है। लेकिन कुछ महीने गुजरे और फिर उसके बाद उसने फैसला किया कि बस ये मैं खुद ही इस्तेमाल करता हूं, तो इस गाड़ी पर से जकात साकित हो गई, इस गाड़ी पर से जकात साकित हो गई क्योंकि अब ये माले नामी ना रहा। जकात किस पर आती है? माले नामी पर। और माले नामी चार चीजें हो गई, सोना चांदी करंसी और माले तिजारत। और अब ये माले तिजारत ना रहा, जब माले तिजारत नहीं तो ये माले नामी नहीं है, ये तो इस्तेमाल के अंदर आ रहा है, इसके जरिए कोई माल नहीं बढ़ रहा। तवज्जो है, लिहाजा जकात के अंदर भी सारा साल माल का नामी होना शर्त है भाई। तो कहते हैं इसलिए क्योंकि जमीन का नामी होना सारे साल के अंदर शर्त है, कमाफी माल जकाती, जैसे कि माल जकात के अंदर है कि उसके अंदर भी उस माल का सारा साल नामी होना शर्त है। औ युदारुल हुक्म अलल हकीकत इंद खुरूजिल खारिजी, दूसरी दलील दे रहे हैं, यह हुक्म का मदार हकीकी पैदावार पर होगा जब पैदावार पाई जाए। भाई खराज के अंदर, खराज के अंदर दारोमदार हकीकी पैदावार पर है या तकदीरी पैदावार पर है? खराज के अंदर तकदीरी पैदावार पर है। तवज्जो है भाई, मैंने आपको बतलाया एक शख्स के पास खराजी जमीन है, वो चाहे सारा साल इस पर कुछ भी ना काश्त करे तो उस कोताही उस आदमी की तरफ से पाई गई है, यह जमीन तो काश्त के काबिल थी लिहाजा उसको फिर भी खराज अदा करना पड़ेगा। मालूम हुआ खराज के अंदर हकीकी पैदावार को नहीं देखा जाएगा बल्कि पैदावार पर कुदरत को देखा जाएगा, यानी यूं को नमाए तकदीरी को देखा जाएगा। किसको? नमाए तकदीरी को देखा जाएगा। और यह नमाए तकदीरी यह कायम मकाम है नमाए हकीकी के, हकीकत में जो पैदावार होती है जमीन से। तवज्जो है, तो नमाए हकीकी यानी जमीर से बाकायदा पैदावार हासिल हो यह है असल, लेकिन यहां असल का एतबार नहीं किया बल्कि नमाए तकदीरी का एतबार किया। तो यह नमाए तकदीरी यह किसके कायम मकाम है? नमाए हकीकी के कायम मकाम है। और जब नमाए हकीकी खुद आ गई, जमीन ने पैदावार दे दी, तो अब इसी का एतबार किया जाएगा, यानी असल का ही एतबार किया जाएगा। लेकिन असल को तो आफत ने तबाह कर दिया, लिहाजा अब इस पर खराज नहीं आएगा। दलील समझ में आई? फिर समझें भाई, देखो खराज के अंदर तकदीरी पैदावार को देखा जाता है, लेकिन साहिबे हिदायत दूसरे अंदाज में दलील दे रहे हैं कि यहां पर आफत आई फसल खत्म तो खराज भी खत्म। भाई खराज किस तरह खत्म? कहते हैं देखो ये जो तकदीरी नमा का हमने एतबार किया था वो किसके कायम मकाम थी? हकीकी पैदावार के। तो जब खुद हकीकी पैदावार मौजूद हो तो फिर उसी का एतबार किया जाना चाहिए क्योंकि वो असल है। तो जब असल का एतबार किया गया तो असल तो फौत हो गई आफत की वजह से, लिहाजा खराज भी साकित हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यह माना है औ युदारुल हुक्म अलल हकीकती, या इस खराज के हुक्म का मदार होगा हकीकी पैदावार पर। इंद खुरूजिल खारिजी, पैदावार के निकलते वक्त, खारिज से क्या मुराद है? पैदावार। इंद खुरूजिल खारिजी, जब पैदावार निकले यानी जब पैदावार हासिल हो रही है तो उस वक्त हकीकी पैदावार का एतबार किया जाएगा। आगे देखिए, काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वह इन अतलहा साहिबुहा फअलैहिल खराजू, वह इन अतलहा, और उस जमीन को अगर मालिक ने वैसे ही बेकार छोड़ दिया। अतला युअतिलु तातील का क्या माना है? बेकार छोड़ देना। तो मालिक ने जमीन को वैसे ही बेकार छोड़ दिया, उस पर फसल ही काश्त न की, तो ये उसकी कोताही है भाई, लिहाजा उसको खराज फिर भी देना पड़ेगा। तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वह इन अतलहा साहिबुहा, और अगर उस जमीन को जमीन के मालिक ने वैसे ही बेकार छोड़ दिया, फअलैहिल खराज, तो उस पर खराज वाजिब होगा। लिअन्न तमक्कुना कान साबितन, इसलिए क्योंकि कुदरत जो है साबित थी। यहां जमीन पर काश्त करने पर उसको कुदरत हासिल थी भाई। कहते हैं अन्न तमकुना कान असाबितन, इसलिए क्योंकि उसकी कुदरत जरात पर वो साबित थी। वह हुआ लदी फौवतहू, और ये शख्स ही है जिसने इस कुदरत को फौत कर दिया, इसने कोई पैदावार हासिल नहीं की, इसकी कोताही है। तो कहते हैं वह हुआ लदी फौवतहू, और ये शख्स ही वो है जिसने इस कुदरत को फौत किया है। कालू फुकहा फरमाते हैं मन इंतकला इला अखसिल अमरैनी मिन गैर उज़्रिन, के जो शख्स मुंतकिल हो गया दो अमरों में से अदना की तरफ। अखस का मना जो ज्यादा घटिया है, ज्यादा अदना है। मसलन एक आदमी की जमीन है, उससे जाफरान हासिल हो सकता है, और जाफरान वो तो कीमती चीज है भाई, लेकिन उसने जाफरान के बजाय आम फसल काश्त कर ली। तो कहते हैं इससे फिर भी जाफरान वाला खराज ही वसूल किया जाएगा। तवज्जो है, क्योंकि जमीन तो आला थी, ये कोताही इसकी तरफ से है कि इसने आम चीज उसमें काश्त की है भाई। तो कालू फुकहा फरमाते हैं मन इंतकला इला अखसिल अमरैनी मिन गैर उज़्रिन, के जो शख्स बगैर उज़र के दो चीजों में से ज्यादा घटिया चीज की तरह मुंतकिल हो गया। फअलैहिल खराजुल आला, तो उस पर आला खराज वाजिब होगा। लिअन्नहु हुवल्लज़ी ज़य्या ज़ियादता, इसलिए क्योंकि ये शख्स ही है जिसने ज्यादती को जाया कर दिया। वहादा युअरफू वला युफ्ता बिही, साहिब हिदायत फरमाते हैं कि यह मसला जाना तो जाएगा, जो शख्स दो चीजों में से अदना चीज की तरफ बिला वजह बगैर उजर के मुंतकिल हो गया तो उससे आला खराज वसूल किया जाएगा। तो साहिब हिदायत बतला रहे हैं कि यह मसला जाना तो जाएगा लेकिन इसका फतवा नहीं दिया जाएगा, इसलिए क्योंकि जो टैक्स वसूल करने वाले हैं, जैसे आजकल आप देखते हैं बड़ा जुल्म करते हैं लोगों पर भाई, तो अगर इन लोगों को आप ये मसला बता देंगे फिर तो वो लोगों पर और ज्यादा जुल्म करेंगे। वो तो आम जमीन भी होगी, लोगों को कहेंगे तुम्हारी आला जमीन थी लिहाजा तुम्हें आला खराज देना पड़ेगा। तो कहते हैं वहादा युअरफू, इस बात को जाना तो जाएगा लेकिन वला युफ्ता बिही, लेकिन इसका फतवा नहीं दिया जाएगा। कई ला यतजर्रा अज़्ज़लमतु, ताकि कहीं जालिम लोग जुर्रत न करें। अला अख्ज़ी अमवालिन नासी, लोगों के माल लेने पर। आगे देखिए वमन असलमा मिन अहलिल खराज उखिजा मिनहुल खराज अला हालिही, मैंने आपको बतलाया था कि काफिर की जमीन पर खराज आता है, लेकिन अगर उसको कोई मुसलमान खरीद ले तो उससे भी खराज ही वसूल करेंगे। इसी तरह अगर वो काफिर मुसलमान हो गया फिर भी उसकी जमीन पर एक दफा खराज मुकर्रर है तो उसको खराज ही अदा करना पड़ेगा। तो कहते हैं वमन असलम मिन अहलिल खराजी, और खराज वालों में से जो शख्स मुसलमान हो गया उखिजा मिनहुल खराज अला हालिही, तो उससे खराज लिया जाएगा अला हालिही उसी हालत पर। लिअन्न फीहि मअनल मुअनति, इसलिए क्योंकि खराज के अंदर मुअनत का माना है। याद रखो खराज के अंदर सजा का भी पहलू है और खराज के अंदर मुअनत यानी मशक्कत और खर्चे का भी पहलू है। मुअनत का माना होता है बोझ भाई, बोझ, या इसी तरह किसी का खर्चा उठाना। जैसे देखो बाप पर अपनी नाबालिग औलाद का खर्चा शरीयत ने डाला है, तो यूं कहेंगे कि शरीयत ने बच्चों की मुअनत जो है बाप पर डाली है। तो मुअनत का क्या माना कर लें यहां, खर्चा उठाना, किसी चीज का खर्चा जो है। तो खराज के अंदर सजा वाला पहलू भी है और नीज इसमें खर्चा उठाने वाला पहलू भी है कि ये जमीन तुम्हारी है तो इसका खर्चा भी तुम्हें उठाना पड़ेगा। जैसे औलाद जिस शख्स की हो खर्चा भी उसी को उठाना पड़ता है। तो कहते हैं अन्नफी हिमानल मुअनति, इसलिए क्योंकि खराज के अंदर जो है खर्चा उठाने वाला माना भी है। फयुअता बरु मुअनतन फी हालतिल बकाई, तो खर्चा उठाने का ही एतबार किया जाएगा बका की हालत में। बका की हालत में खर्चा उठाने का एतबार किया जाएगा, सजा का एतबार नहीं किया जाएगा, क्योंकि मुसलमान तो सजा का अहल नहीं है भाई। तो फयुअतबरु मुअनतन फी हालतिल बकाई, तो खर्चा उठाने का एतबार किया जाएगा बका की हालत में। फअमकन इबकाउहु अलल मुस्लिमी, तो लिहाजा खराज को बाकी रखना मुमकिन है मुसलमान पर। मुसलमान पर खराज को बाकी रखना मुमकिन है बतौर सजा के नहीं बल्कि बतौर खर्चे के भाई। भाई एक जाब्ता आप पहले भी पढ़ चुके हैं, दो चार सफे कबल गुजरा था, एक है ताकीद और एक है इब्तिदा। ताकीद आसान है इब्तिदा के मामला में, इसलिए क्योंकि इब्तिदा के अंदर एक नया हुक्म साबित करना पड़ेगा और ताकीद के अंदर वही हुक्म जो पहले से साबित है उसी को पुख्ता करार दे दिया जाएगा, उसी को पक्का करार दे दिया जाएगा, तो ताकीद आसान है इब्तिदा के मुकाबले में। और यहां साहिब हिदायत ने बतलाया फअमकना इबकाउहु अलल मुस्लिमी, तो इससे एक और जाब्ता समझ में आ गया कि एक है बका और एक है इब्तिदा। बका आसान है इब्तिदा के मुकाबले में, इब्तिदान यानी अगर यह शख्स मुसलमान हुआ है और अब आप इसकी जमीनों पर उशर वाजिब करना चाहते हैं तो यह तो एक नई चीज की आप इब्तिदा कर रहे हैं, और एक चीज पहले से मौजूद है उसी को बाकी रखा जाए तो बका आसान है किसके मुकाबले में, इब्तिदा के मुकाबले में। तो यहां इसलिए बका पर अमल किया जाएगा। तो यह माना है फअमकना इबकाउहु अलल मुस्लिमी, तो खराज को बाकी रखना मुमकिन है मुसलमान पर। वयजूजु अन यश्तरियल मुस्लिमु अर्जल खराज मिनज जिम्मी, और यह भी जायज है कि मुसलमान खराजी जमीन जिम्मी से खरीद ले। वयुखदु मिनहुल खराज लिमा कुलना, और उस मुसलमान से फिर खराज लिया जाएगा लिमा कुलना, उस वजह से जो हमने कहा कि खराज के अंदर खर्चा उठाने वाला माना भी है, तो इस एतबार से इस मुसलमान पर भी इस जमीन का खर्चा आएगा। वकद सहा, और तहकीक के बाद सही तौर पर साबित है अन्न सहाबत रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, के सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जो हैं इश्तराउ अराज़ियल खराजी, उन्होंने खराजी जमीनों को खरीदा। यह बात सही तौर पर साबित है कि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने खराजी जमीनों को खरीदा। वकानू युअद्दूना खराजहा, और वो उसका खराज अदा किया करते थे। फदल्ला अला जवाज़ी शिराई व अख़्ज़िल खराजी व अदाइही लिल मुस्लिमी मिन गैरी कराहतिन, फदल्ला तो इस बात ने दलालत कर दी अला जवाज़ी शिराई, इस बात पर कि मुसलमान के लिए खराजी जमीन खरीदना जायज है। व अख़्ज़िल खराजी, और इसने दलालत कर दी कि खराज का लेना जायज है। व अदाइही लिल मुस्लिमी, और इसने इस बात पर दलालत कर दी कि मुसलमान का खराज को अदा करना जायज है। मिन गैरी कराहतिन, बगैर किसी कराहत के। ये तो मैं लफ्जी तर्जमा कर रहा था, अब बामुहावरा तर्जमा सुनिए। कहते हैं फदल्ला, तो इस बात ने दलालत कर दी अला जवाज़ी शिराई व अख़्ज़िल खराजी व अदाइही लिल मुस्लिमी, के खरीदना और खराज लेना और मुसलमान का खराज अदा करना जायज है। मिन गैरी कराहतिन, बगैर किसी कराहत के। तवज्जो है, यानी मुसलमान का खराजी जमीन को खरीदना या उसे खराज लेना और मुसलमान का खराज को अदा करना, यह बगैर कराहत के जायज है। भाई तवज्जो है, तो यहां आया व अख़्ज़िल खराजी व अदाइही लिल मुस्लिमी, भाई ये दोनों अलग चीजें हैं। खराज लेना ये इमाम का काम है और खराज अदा करना ये मुसलमान का काम है। तो फदल्ला अला जवाज़ी शिराई व अख़्ज़िल खराजी व अदाइही लिल मुस्लिमी, तो खरीदना और इसी तरह खराज का लेना और मुसलमान का खराज को अदा करना, मिन गैरी कराहतिन, बगैर किसी कराहत के, इस पर इस बात ने दलालत कर दी। भाई आगे देखिए वला उशरा फिल खारिजी मिन अर्ज़िल खराजी। अच्छा भाई, खराजी जमीन पर साल में एक ही मर्तबा खराज आएगा, तो क्या खराजी जमीन से जो पैदावार हासिल होगी उसमें से उशर दिया जाएगा या नहीं? तो याद रखो इंदल अहनाफ उशर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जब खराज आ गया तो अब उशर वसूल नहीं किया जा सकता। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, खराजी जमीन वाले को भी उशर अदा करना पड़ेगा। भाई तो कहते हैं वला उशरा फिल खारिजी मिन अर्ज़िल खराजी, और उशर नहीं है फिल खारिजी पैदावार में, मिन अर्ज़िल खराजी खराजी जमीन से, खराजी जमीन से जो पैदावार है उसमें उशर नहीं है। कहते हैं वला उशरा फिल खारिजी मिन अर्ज़िल खराजी, खराजी जमीन की पैदावार में उशर नहीं है। वकाल शाफी रहिमहुल्ला, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं युजमाउ बैनहुमा, कि इन दोनों को जमा किया जाएगा, यानी उशर और खराज को दोनों अदा किए जाएंगे। लिअन्नहुमा हक्कानी मुख्तलिफानी वजबा फी महल्लैनी बिसबबैनी मुख्तलिफैन। इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं कि ये जो खराज है, खराज और उशर ये जात के एतबार से भी अलग हैं, महल के एतबार से भी अलग हैं, सबब के एतबार से भी अलग हैं और मसरफ के एतबार से भी अलग हैं, लिहाजा दोनों वाजिब होंगे। दोनों जात के एतबार से ही अलग हैं, खराज में सजा का पहलू है और उशर में इबादत का पहलू है भाई, और नीज महल भी दोनों का अलग अलग है। खराज जो है वो मालिक के जिम्मे होता है और उशर जो है वो पैदावार में होता है भाई। खराज किस पर? मालिक के जिम्मे, और उशर पैदावार में से निकाला जाता है, और दोनों के सबब भी अलग अलग हैं भाई, सबब भी अलग अलग हैं। इसलिए क्योंकि उशर का जो सबब है वो अर्ज़े नामी है जो हकीकतन पैदावार दे, वो अर्ज़े नामी है, वो पैदावार देने वाली जमीन जो हकीकतन पैदावार दे, ये है उशर का सबब। और खराज का जो सबब है वो अर्ज़े नामी है कि जिससे पैदावार हासिल करने पर कुदरत हो गई। तो उशर का सबब क्या? वो अर्ज़े नामी जिससे हकीकी पैदावार हासिल हो, और खराज का सबब वो अर्ज़े नामी जिसमें पैदावार हासिल करने पर कुदरत हो। तो दोनों के सबब भी अलग अलग हैं और नीज दोनों के मसरफ भी अलग अलग हैं। उशर जो है वो फुकरा पर खर्च किया जाता है, उसका मसरफ क्या है? फुकरा, जैसे जकात फुकरा को दी जाती है, उशर भी फुकरा को दिया जाता है। और खराज, खराज जो है वो तो तमाम मुसलमानों की मसलहत के कामों में खर्च किया जाता है, जैसे कि माले फै है भाई, तवज्जो है। तो दोनों के मसरफ भी अलग, तो जात के एतबार से भी दोनों अलग क्योंकि एक में सजा का पहलू है और एक में इबादत का, और महल के एतबार से भी दोनों अलग क्योंकि उशर जो है वो पैदावार पर होता है और खराज मालिक के जिम्मे होता है, और सबब के एतबार से भी दोनों अलग क्योंकि उशर के अंदर हकीकी पैदावार को देखा जाता है और खराज के अंदर पैदावार पर कुदरत को देखा जाता है, और नीज मसरफ के एतबार से भी दोनों अलग हैं। उशर का मसरफ जो है वो फुकारा है और खराज का मसरफ जो है वो तमाम मुसलमान है, यानी उनकी मसलहत के कामों में खर्च किया जाएगा। तो कहते हैं वकाल शाफी रहमहुल्लाह तआला युजमाउ बैनहुमा, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इन दोनों को जमा किया जाएगा यानी उशर और खराज को, लिअन्नहुमा हक्कानि मुख्तलिफानि, इसलिए क्योंकि ये दो मुख्तलिफ हक हैं, जात के एतबार से भी मुख्तलिफ और मसरफ के एतबार से भी मुख्तलिफ, इसलिए क्योंकि ये दोनों मुख्तलिफ हक हैं। वजबा फी महल्लैनी, और जो वाजिब हुए हैं दो महलों में, उनका दोनों का महल अलग अलग है। उशर का महल वो पैदावार है और खराज का महल मालिक का जिम्मा है। तो कहते हैं लिअन्नहुमा हक्कानि मुख्तलिफानि, इसलिए क्योंकि उशर और खराज दो ऐसे मुख्तलिफ हक हैं। वजबा फी महल्लैनी, जो दो अलग अलग जगहों के अंदर वाजिब हुए हैं। बिसबबैनि मुख्तलिफैनि, दो मुख्तलिफ सबबों की वजह से कि दोनों का सबब भी अलग अलग है। फला यतनाफी यानी, लिहाजा ये बाहम मुतनाफी नहीं होंगे, यानी एक की वजह से दूसरा मुंतफी नहीं होगा, दोनों वाजिब होंगे। फला यतनाफी यानी, तो ये दोनों मुतनाफी नहीं होंगे। वलाना, अब हमारी दलील आ गई। वलाना और हमारी दलील जो है कौलुहु अलैहि सलातु वस्सलाम, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल मुबारक है कि आपने फरमाया ला यजतमिउ उशरुन व खराजुन फी अर्ज़ मुस्लिमीन, कि उशर और खराज जमा नहीं हो सकते मुसलमान की जमीन में। हदीस में आ गया कि मुसलमान की जमीन में उशर और खराज जमा नहीं हो सकते। वली अन्न आहदम मिन अइम्मतिल अदल वल जौरी लम यजमा बैनहुमा, अदल का माना है इंसाफ, जौर बई जीम वाव रा, जौर कहते हैं जुलम को, जुलम। साहिब हिदायत दलील जिक्र फरमा रहे हैं कि जो अदलो इंसाफ और जुलम के अइमा गुजरे हैं उनमें से भी किसी ने दोनों को जमा नहीं किया। अदल और इंसाफ के जो इमाम और बादशाह गुजरे हैं और जुल्म के जो इमाम गुजरे हैं वो उनमें से किसी ने भी इन दोनों को जमा नहीं किया। मुहशी हजरात फरमाते हैं कि इससे मुराद है हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह से पहले के खुलाफा, हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह, उनसे माकबल के खुलाफा मुराद हैं, क्योंकि खुद हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने दोनों को जमा फरमाया था। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने दोनों को जमा फरमाया था। तो यहां जो आया कि वो अइमा जो अदल और जुलम वाले हैं। तो हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज से पहले के खुलफा मुराद हैं, तो इनसे माकबल के जितने खुलफा गुजरे हैं वो सब इसके अंदर आ गए। तो उनमें से बाज अदल और इंसाफ वाले थे, बाज कुछ जुल्म भी करने वाले थे। तो जितने भी बहरहाल खुलफा गुजरे किसी ने दोनों को जमा नहीं किया। मालूम हुआ उनका इजमा था इस बात पर कि दोनों को जमा नहीं किया जा सकता। और बाद में हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने अगरचे दोनों को जमा कर दिया, लेकिन बाद वाले का इख्तिलाफ करना भी माकबल वालों के इजमा को नहीं तोड़ सकता। भाई तवज्जो है। तो यह माना है वली अन अहदम मिन अइमतिल अदल वल जौरी, और इसलिए कि इंसाफ और जुल्म वाले इमामों में से किसी एक ने भी लम यजमा बैनहुमा, इन दोनों को जमा नहीं फरमाया। वकफा बी इजमाइहिम हुज्जतन, और इनका इजमा काफी है हुज्जतन दलील होने के एतबार से, इनका इजमा काफी है दलील होने के एतबार से, यानी यही दलील काफी है भाई। वली अन अल खराज यजिबु फी अर्ज़िन फुतिहत अन वतन व कहरन, यहां से अकली दलील जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं वली अन अल खराज यजिबु फी अर्ज़िन फुतिहत अन वतन व कहरन, और इसलिए क्योंकि खराज जो है उस जमीन के अंदर वाजिब होता है जिसको जोरे बाजू से और गलबे के जरिए फतह किया जाए। वल उशर फी अर्ज़िन अस्लमा अहलुहा तौअन, और उशर उस जमीन में वाजिब होता है कि जिसके रहने वाले खुशी से मुसलमान हो जाएं। तो कहते हैं वल उशर फी अर्ज़िन अस्लमा अहलुहा तौअन, और उशर उस जमीन में होता है जिसके रहने वाले खुशी से यानी अपनी मर्जी से मुसलमान हो जाएं। वल वस्फानी ला यजतमियानी फी अर्ज़िन वाहिदा, और ये दोनों वसफ एक जमीन में जमा नहीं हो सकते कि उसको कुव्वते बाजू से भी फतह किया गया हो और उसके रहने वाले खुशी से मुसलमान भी हो गए हों। भाई ऐसा नहीं हो सकता, एक वक्त में एक ही चीज होगी भाई। तो कहते हैं वलवस्फान इला यजतमियानि फी अर्ज़िन वाहिदा, और ये दोनों वसफ जो हैं एक जमीन के अंदर जमा नहीं हो सकते। वसबबुल हक्कैनि वाहिदुन, यहां से जवाब दे रहे हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह, फरमाते थे कि ये दो मुख्तलिफ हक हैं और इनका सबब अलग अलग है, यानी एक के अंदर हकीकी पैदावार है और एक के अंदर पैदावार पर कुदरत है, तो दोनों के सबब अलग अलग हैं। हम जवाब देते नहीं, वह सबबुल हक्कैन वाहिदुन, इन दोनों हकों का सबब एक ही है और वो अर्ज़े नामी है, पैदावार देने वाली जमीन। तवज्जो है। तो कहते हैं वसबबुल हक्कैन वाहिदुन, और दोनों हकों का सबब एक ही है। वह हुवल अर्ज़ुन नामियतु, और वो पैदावार देने वाली जमीन है। इल्ला अन्नहु युअतबरु फिल उश्री तहकीकन व फिल खराज तकदीरन, मगर ये कि इस पैदावार का एतबार किया जाएगा उशर के अंदर तहकीकन तहकीकी तौर पर, यानी हकीकतन पैदावार हासिल हो। व फिल खराज तकदीरन, और खराज के अंदर इस पैदावार का एतबार किया जाएगा तकदीरन फर्ज करते हुए, यानी पैदावार हो या ना हो जमीन पर काश की कुदरत होनी चाहिए। सबब एक ही है अर्ज़े नामी। तो कहते हैं इल्ला अन्नहु युअतबरु फिल उश्री तहकीकन, मगर यह कि इस पैदावार का एतबार किया जाएगा उशर में तहकीकन हकीकतन उसका इस बात करते हुए। वफिल खराज तकदीरन, और खराज के अंदर तकदीरन इस पैदावार का एतबार किया जाएगा। वलिहादा युजाफानी इलल अर्ज़ी, और इसीलिए इन दोनों की निस्बत जमीन की तरफ होती है, दोनों की निस्बत जमीन की तरफ होती है, उशर की भी और खराज की भी। उशर की निस्बत भी जमीन की तरफ करते हैं और कहते हैं उशरुल अर्ज़, जमीन का उशर, और खराज की निस्बत भी जमीन की तरफ करते हैं और कहते हैं खराजुल अर्ज़। और ये जो निस्बत है ये सबब होने की दलील है, निस्बत जो है सबब होने की दलील है। मालूम हुआ उशरुल अर्ज, मालूम हुआ इसका सबब जमीन है इस उशर का, और खराजुल अर्ज मालूम हुआ इस खराज का सबब भी जमीन है, क्योंकि क्योंकि निस्बत जो है ये सबब होने की दलील होती है भाई। तो कहते हैं वलिहादा युजाफानी इलल अर्ज़ी, और इसीलिए इन दोनों की निस्बत की जाती है जमीन की तरफ। वअला हादल खिलाफ ज़कातु मा अहदिहिमा, और इसी इख्तिलाफ पर है ज़कात इन दोनों में से किसी एक के साथ। भाई देखिए, हमारा और इमाम शाफी रहमतुल्लाह का इख्तिलाफ जिक्र हुआ, हमारे नजदीक खराजी जमीन में सिर्फ खराज आएगा उशर नहीं, उशर और खराज जमा नहीं हो सकते। इसी तरह हमारा और इमाम शाफी रहमतुल्लाह का इख्तिलाफ है माले जकात के अंदर भी, जब आम जकात इन दोनों में से किसी एक के साथ जमा हो जाए। मसलन एक आदमी ने तिजारत की नीयत से जमीन खरीद ली, तो अगर उशर या खराज इस जमीन में से वो अदा करता है फिर तिजारत वाली जकात अदा नहीं की जाएगी। वो जकात जो साल के गुजरने के बाद माल में से अदा की जाती है वो जकात अदा नहीं की जाएगी, क्योंकि खराज या उशर पहले ही अदा किया जा रहा है भाई। जबकि उनके नजदीक इसके अंदर खराज या उशर के साथ जकात भी जमा होगी भाई। सूरत समझ में आ गई। तो कहते हैं वाला हादल खिलाफ जकात अहदिहिमा, और इसी इख्तिलाफ पर है जकात भी इन दोनों में से किसी एक के साथ। वला यतकररुल खराज बितकररिल खारिज फी सनतिन, और इसी तरह खराज मुकर्रर नहीं होगा पैदावार के मुकर्रर होने से फी सनतिन एक साल में। भाई खराज साल में एक ही दफा लिया जाएगा, पैदावार चाहे साल में एक से ज्यादा दफा हासिल हो फिर भी एक ही मर्तबा खराज लेंगे। ये माना है वला यतकररुल खराज बितकररिल खारिज फी सनतिन, और एक साल के अंदर पैदावार के मुकर्रर होने की वजह से खराज मुकर्रर नहीं होगा। लिअन्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लम युवज़िफहु मुकर्ररा, इसलिए क्योंकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खराज मुकर्रर नहीं फरमाया मुकर्ररन मुकर्रर करते हुए। बेखिलाफ इल उशरी, बखिलाफ उशर के। लिअन्नहु ला यतहक्कु उशरन इल्ला बिवुजूबिही फी कुल्ली खारिजिन, बिखिलाफ इल उशरी, बखिलाफ उशर के। लिअन्नहु ला यतहक्कु उशरन, इसलिए क्योंकि उशर उशर हो ही नहीं सकता जब तक हर पैदावार के अंदर वाजिब न किया जाए, क्योंकि उशर का लफ्ज ही बतला रहा है कि यह दसवां हिस्सा है, और दसवां हिस्सा तभी होगा जब पैदावार तो हासिल हो। बात समझ में आ गई। यह माना है बेखिलाफ इल उशरी, बखिलाफ उशर के। लिअन्नहु ला यतहक्कु उशरन, इसलिए क्योंकि उशर जो है वो उशर होकर नहीं पाया जा सकता। इल्ला बिवुजूबिही फी कुल्ली खारिजिन, मगर यह कि यह वाजिब हो हर पैदावार में। यहां तक बात समझ में आ गई। आगे देखिए भाई, बाबुल जिजियती, ये बाब है जिजिया के बयान में। भाई जिस तरह कुफार की जमीनों से खराज वसूल किया जाता है, इसी तरह कुफार के अफराद से सालाना टैक्स वसूल किया जाता है जिसे जिजिया कहते हैं। भाई जिजिया कहते हैं, और यह बड़ा मामूली सा होता है, और साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि जिजिया सिर्फ उन लोगों पर आएगा कुफार के जो लड़ने पर कादिर हैं, उन अफराद पर आएगा जो लड़ने पर कादिर हैं। लिहाजा जो बच्चे हैं या औरतें हैं या बहुत बूढ़े लोग हैं या अपाहज हैं या अंधे हैं, ये लोग तो जंग नहीं कर सकते, लड़ाई नहीं कर सकते, लिहाजा इनसे जिजिया भी वसूल नहीं किया जाएगा। तो कहते हैं बाबुल जिजियती, ये जिजिया का बाब है। वही अला जरबैनी, और जिजिया दो किस्म पर है। भाई इब्तिदा के अंदर जिजिया की अकसाम बयान फरमा रहे हैं साहिब हिदाया, याद रखो जिजिया दो किस्म पर है। एक वो जिजिया है कि मुसलमान किसी इलाके पर हमला आवर हुए और वहां के लोगों ने मुसलमानों के रोब और खौफ की वजह से जंग करने के बजाय मुसलमानों से सुलह की दरखास्त की कि हमारे साथ लड़ाई न करें, आपको जितना माल चाहिए हम हर साल आपको माल दे दिया करेंगे। चुनांचे उनके और मुसलमानों के दरमियान बातचीत हुई और कुछ माल बाहमी रजामंदी से मुकर्रर कर लिया गया कि यह माल वो कुफार हर साल अदा किया करेंगे। यह एक किस्म है जिजिया की। और दूसरी किस्म जिजिया की वो है कि मुसलमान किसी इलाके को बाकायदा फतह कर लेते हैं और फिर वहां के लोगों पर जिजिया मुकर्रर करते हैं, तो वो अलग किस्म है। वो जो दूसरी किस्म है उसकी मिकदार आगे बयान करेंगे कि मालदार होगा तो वो साल के 48 दिरहम देगा भाई, हर महीने के 4 दिरहम, और गरीब होगा तो वो हर महीने का 1 दिरहम देगा यानी साल के 12 दिरहम, और अगर मुतवसित दर्जे का आदमी है तो फिर वो हर महीने 2 दिरहम देगा यानी साल के 24 दिरहम। ये वो सूरत है जब मुसलमान किसी इलाके को फतह कर लें तो उनके लड़ने वाले यानी बालिग मर्दों पर ये जिजिया मुकर्रर किया जाएगा। लेकिन वो जिजिया जो कुफार के साथ बाहमी रजामंदी से मुकर्रर किया जाए, वो जिस बात पर भी आपस में फैसला हो जाए, जो भी मुकर्रर कर लिया जाए वही वसूल किया जाएगा भाई। तो कहते हैं वही अला जरबैनी, और ये जिजिया दो किस्म पर है, जिजिया तुन तू जाऊ बि तराजी व सुलही, एक वो जिजिया है जो मुकरर किया जाता है बाहमी रजामंदी और सुलह की वजह से, फता तकदारू बिहा सभी मा यका अलैही लित्तिफाकू, तो ये मुकरर होगा उसी के बकदर जिस पर इत्तिफाक हो जाए, कमा सालह रसूलुल्लाह अलैहि सलातु व सलाम अहल नजराना, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह फरमा ली अहले नजरान से, ये यमन के इलाकों में से कोई इलाका था भाई, तो हुजूर अलैहि सलाम ने अहले नजरान से सुलह फरमा ली अला अल्फिन व मिआतै हुल्लतिन, 1200 जोड़ों पर, हुल्ला कहते हैं जोड़े को, यानी जो दो चादरों पर मुश्तमिल हो, एक ऊपर बदन के लिए और एक नीचे बतौर तहबंद के बांधने के लिए, तो हुल्ला के अंदर दो चादरें होती हैं भाई। तो कदीम जमाने के अंदर मैंने आपको बतलाया कि कपड़ा हाथ से बुना जाता था और बड़ा कीमती होता था भाई, तो हुजूर अलैह सलाम ने नजरान वालों से सुलह फरमाई 1200 जोड़ों पर कि वो 1200 जोड़े अदा करेंगे, यानी दो किस्तों के अंदर, दो किस्तों के अंदर, निसफ जो है वो सफर के महीने में अदा करेंगे और निसफ जो है वो रजब के महीने में अदा करेंगे। तो कहते हैं जैसे कि हुजूर अलैहि सलाम ने अहले नजरान से सुलह फरमाई अला अल्फियों व मिआतै हुल्लतिन, 1200 जोड़ों की शर्त पर, वली अन्नल मुजिबा हुआ ताराजी, यहां से अकली दलील भी जिक्र कर रहे हैं कि यहां पर बाहमी रजामंदी से जब एक माल पर सुलह हो गई है तो किसी और माल की ज्यादती नहीं की जाएगी। कहते हैं वली अन अलमूजिबा हुआ तराजी, इसलिए क्योंकि इस जिजिया को वाजिब करने वाली जो चीज है वो बाहमी रजामंदी है, फला यजूज उत्तअद्दी इला गैरी मा वका अलैही लित्तिफाकू, फला यजूज उत्तअद्दी, लिहाजा तजावुज करना जायज नहीं है, इला गैरी मा वका अलैही लित्तिफाकू, इलावा उस चीज के जिस पर इत्तेफाक हुआ, यानी जिस पर इत्तेफाक हुआ है उसके अलावा किसी और चीज की तरफ तजावुज करना जायज नहीं, जिस पर आपस में सुलह हुई है वही वसूल किया जाएगा। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वली अन अलमूजिबा हुआ तराजी, और इसलिए क्योंकि यहां पर इसको वाजिब करने वाली चीज जो है वो बाहमी रजामंदी है, फला यजूज उत्तअद्दी, लिहाजा तजावुज करना जायज नहीं, भाई किस चीज की तरफ तजावुज, कहते हैं इला गैरी मा वका अलैहि लित्तिफाकू, जिस पर इत्तेफाक वाके हुआ है उसके अलावा की तरफ, उसके अलावा की तरफ तजावुज करना जायज नहीं है। वह जिज़यतुन यब्तदी उल इमाम वज़अहा इदा ग़लब अल इमाम अलल कुफार, ये जिज़िया की दूसरी किस्म आ गई, वह जिज़यतुन, और दूसरी किस्म जिज़िया की वो है यब्तदी उल इमाम वज़अहा, कि इमाम इब्तिदा करे उसके मुकर्रर करने की, इदा ग़लब अल इमाम अलल कुफारी, जब इमाम कुफार पर गालिब आ जाए, वह अकर्रहुम अला अमलाकिहिम, और कुफार को बरकरार रखे उनकी मिल्कियतों पर, कुफार को उनकी मिल्कियतों पर बरकरार रखता है और उन पर जिजिया मुकरर कर देता है और जमीनों पर खराज मुकरर कर देता है। तो कहते हैं दूसरी किस्म वो है जो इमाम मुकरर करे उन कुफार पर, जब इमाम उन पर गालिब आ जाए, वा कर रहूं अला अमला के हिम, और उन कुफार को इमाम उनकी मिल्कियतों पर बरकरार रखता है, फयजाऊ अलल गनी ये जाहिरिल गीना, गनी कहते हैं मालदार को और गीना कहते हैं मालदारी को, तो कहते हैं फैयज़ाऊ, तो इमाम मुकरर करेगा अलल गनी ये जाहिरिल गीना, उस मालदार पर, अज़ाहिरिल गीना, जिसकी मालदारी जाहिर है, यानी उसकी मालदारी जाहिर है, सबको पता है ये मालदार है भाई, और बैन सतूर लिखा हुआ है जो 10,000 दिरहम का मालिक हो, जो 10,000 दिरहम या इससे ज्यादा का मालिक है इसको बड़ा मालदार शुमार किया जाता है, इससे साल में 48 दिरहम लेंगे, और आगे मुतवस्सित दर्जे वाला कहते हैं वो है जिसके पास 200 दिरहम या इससे ज्यादा हो, 10,000 से तो कम है लेकिन 200 दिरहम या इससे ज्यादा हैं, इससे साल में 24 दिरहम लिए जाएंगे, और जो काम काज करने वाला आदमी है, जो रोजाना काम काज करता है और पैसे कमाता है, तो उससे साल के अंदर 12 दिरहम लिए जाएंगे। तो कहते हैं फयज़ाउ अलल गनी, ये जाहिर अल गीना, तो इमाम मुकरर करेगा उस मालदार पर जो जिसकी मालदारी जाहिर है, फी कुल सनतिन, हर साल के अंदर, समानियतम व अरबईन दिरहमन, 48 दिरहम, या खुजु मिनहुम फी कुल शहरिन अरबाता दराहिमा, इमाम इनसे लेगा हर महीने में 4 दिरहम, वाला वसतिल हाली अरबातम वीन दिरहमन, और मुतवसित हाल वाले पर 24 दिरहम मुकरर करेगा, फीकुल्ली शहरिन दिरहमैनी, हर महीने में 2 दिरहम, वाल फकीर इल मोतमिली, मोतमिल कहते हैं काम काज करने वाला जो मेहनत के जरिए पैसे कमाता है, कहते हैं वह अलल फकीर इल मोतमिली, और काम काज करने वाले फकीर पर इसने अशारा दिरहमन, 12 दिरहम मुकरर करेगा, फी कुल शहरिन दिरहमन, हर महीने में 1 दिरहम, वहां जा इंदाना, और यह हमारे नजदीक है। वकाल शाफिई रहमहुल्लाह ताला, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, यज़ाउ अला कुल्ली हालिमिन दीनारन, कि इमाम मुकरर करेगा अला कुल्ली हालिमिन, हालिम कहते हैं बालिग को, हालिम बालिग को कहते हैं, कि यज़ाउ अला कुल्ली हालिमिन दीनारन, कि इमाम हर बालिग पर 1 दीनार मुकरर करेगा, औ मा यादिलु दीनारा, या ऐसी चीज जो 1 दीनार के बराबर हो, दीनार हो या दीनार के बराबर कोई चीज हो, यानी दिरहम वगैरह, अल गनी वल फकीर फी ज़ालिका सवाउन, इसमें मालदार और फकीर सब बराबर हैं, सब पर यह मुकरर किया जाएगा। لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله تعالى عنه, बवजह हुजूर अलैहि सलाम के कौल के जो आपने हजरत मुआज़ रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, हुजूर अलैहि सलाम ने हजरत मुआज़ रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब काजी बनाकर यमन रवाना फरमाया तो उनसे फरमाया, खुज मिन कुल हालिमिन व हालिमतिन दीनारन, कि उनमें से हर बालिग मर्द और बालिग औरत से 1 दीनार लेना, औ अदलहू माफिरा, या इसके बराबर माफिर कपड़ा, इनमें से हर बालिग मर्द और औरत से 1 दीनार लेना या इसके बराबर कपड़ा लेना। तवज्जो है, इबारत देखें भाई, खुज मिन कुल हालिमिन व हालिमतिन दीनारन, कि इनमें से हर बालिग मर्द और औरत से 1 दीनार लेना, औ अदलहू, अदला यादिलु अदलन के माने हैं बराबर होना, और माफिर, माफिर याद रखो ये खास किस्म का कपड़ा था, उसको माफिर कहते थे, असल में माफिर कबीले का नाम था, असल में माफिर कबीले का नाम था, और वो कोई खास कपड़ा बनाते थे तो वो कपड़ा माफिरी युन कहलाता था, जैसे लाहौर वाली चीज हो कहते हैं लाहौरी युन, लाहौर वाली, तो इसी तरह वो कपड़ा जो बनाते थे वो माफिरी युन कहलाता था, माफिर वाला कपड़ा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता या निस्बत खत्म करके उस कपड़े का नाम ही माफिर पड़ गया। भाई बात समझ में आ गई, तो हुजूर ने फरमाया कि उनमें से हर बालिग मर्द और औरत से 1 दीनार लेना, औ हद लहू माफिरा, या इसके बराबर माफिर कपड़ा लेना। तो ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील है, वो फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुआज़ रजी अल्लाह तआला से फरमाया कि उनमें से हर बालिग मर्द और औरत से 1 दीनार लेना या इसके बराबर कपड़ा लेना, और इसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने कोई फर्क नहीं किया मालदार और गरीब का, सबसे 1 दीनार लेने का हुक्म दिया। तो कहते हैं मिन गैरी फसलिन, यानी बगैर कोई फर्क किए कि हुजूर ने मालदार और फकीर में कोई फर्क नहीं किया। वली अन अल जिज़्यता इन्नमा वजबत बदलन अनिल कत्ली, नीज इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अकली दलील भी देते हैं कि ये जो जिजिया वाजिब हुआ है ये कत्ल का बदल है, ये जो कुफार हैं ये तो कत्ल के मुस्तहिक हो चुके थे, लेकिन हमने इनको छोड़ दिया और बदले में क्या ले लिया, जिजिया, तो ये जिजिया इनके कत्ल का बदल है भाई, ये जिजिया इनके कत्ल का बदल है, और इसीलिए सिर्फ उन्हीं लोगों पर आता है जिनको कत्ल करना जायज है लड़ाई में, और लड़ाई में कुफार के बालिग मर्दों को कत्ल करना जायज है, और उसमें फिर गरीब और अमीर को नहीं देखा जाता, सबका कत्ल करना जायज है, चाहे वो मालदार हो चाहे फकीर हो। तो लिहाजा जब ये कत्ल का बदल है, और कत्ल के तो ये सब मुस्तहिक हो चुके हैं, चाहे मालदार हो चाहे गरीब हो, लिहाजा सबसे लिया जाएगा। बात समझ में आ गई। कहते हैं वली अन अल जिजिया था इन्नमा वजबत बदलन अनिल कतली, और इसलिए क्योंकि यह जिजिया वाजिब हुआ है इनके कत्ल से बदल होकर। हत्ता ला यजिबू अला मन ला यजूज़ कत्लुहू बिसबब अल कुफ्री, यहां तक कि जिजिया वाजिब नहीं होता अला मन उस शख्स पर, ला यजूज़ कत्लुहू बिसबब अल कुफ्री के, जिसका कत्ल कुफर की वजह से जायज नहीं है। कज़रारी, जैसे कि उनकी औलाद है, वन निस्वानी, और जैसे कि उनकी औरतें हैं, इनका कत्ल कुफर की वजह से जायज नहीं है, तो इन पर वाजिब नहीं है। वहां जलमाना यंतजिमुल फकीर अवल गनिया, और ये वाला जो सबब है, कौन सा सबब, कि ये जिजिया कत्ल का बदल है भाई, और कुफार के जितने बालिग मर थे वो सब कत्ल के मुस्तहिक थे, चाहे मालदार हो चाहे गरीब हो, तो ये कत्ल का बदल होना ये सब में पाया जा रहा है, अमीर में भी और गरीब में भी, लिहाजा सब पर बराबरी के साथ जिजिया आएगा। तो कहते हैं वहाद अल माना, और ये वाला जो माना है यानी ये वाला जो सबब है कि जिजिया वाजिब हो रहा है कत्ल का बदल होकर, ये वाला सबब जो है यंतजिमुल फकीर अवल गनिया, ये फकीर और मालदार सबको शामिल है, लिहाजा सब पर बराबरी के साथ जिजिया वाजिब होगा भाई। वह मजहबुना, अब हमारा मजहब आ गया, वह मजहबुना मनकूल अन उमर व उस्मान व अली रजी अल्लाह तआला अन्हुम, और हमारा यानी अहनाफ का मजहब जो है वह मनकूल है हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हुम से। वलम युनकिर अलैहिम अहद मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी, और मुहाजिरीन और अंसार में से किसी एक ने भी इसका इनकार नहीं किया, किसी एक ने भी इसका इनकार नहीं किया। तो मालूम हुआ इस पर सहाबा का इजमा हो गया भाई। ये याद रखो, ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने वो सवाद इराक की जमीनों पर जब खराज मुकर्रर किया था तो उनके लोगों पर ये जिजिया मुकर्रर किया। हजरत उस्मान इब्ने हुनैफ और हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भेजा था भाई, और जमीनों पर भी उन्होंने खराज मुकर्रर किया, और लोगों के भी तीन तबके बना दिए, जो मालदार थे उन पर उन्होंने 48 दिरहम मुकर्रर किया साल का, और मुतवस्सित लोगों पर 24 दिरहम, और गरीब कामकाज करने वाले लोगों पर साल का 12 दिरहम, और किसी ने इसका इनकार नहीं किया। मालूम हुआ इस पर सहाबा का इजमा हो गया। तवज्जो है, तो इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वह मजहबुना मनकूल अन उमर व उस्मान व अली रजी अल्लाह ताला अन्हुम, और हमारा मजहब मनकूल है हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हुम से। हजरत उमर ने मुकर्रर फरमाया, उसके बाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत आई, तब भी सिलसिला इसी तरह चलता रहा, और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत आई, तब भी सिलसिला इसी तरह चलता रहा। वलम युनकिर अलैहिम अहद मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी, और मुहाजिरीन और अंसार में से किसी एक ने भी इनका इनकार नहीं किया, इस पर रद्द नहीं किया, तो इस पर सहाबा का इजमा हो गया। वली अन्नहु वजब नुसरतन लिल मुकातिलती, यहां से अकली दलील जिक्र कर रहे हैं साहिब हिदाया हमारे मजहब की। हमारे नजदीक ये जो जिम्मियों पर जिजिया वाजिब होता है ये गाजियों की मदद के तौर पर वाजिब होता है, गाजियों की मदद के तौर पर, इसलिए क्योंकि ये भी ममलिकत इस्लामिया में रहते हैं, और ममलिकत इस्लामिया का दिफा ममलिकत के हर आदमी की जिम्मेदारी है, लिहाजा मुसलमान तो अपनी जान और माल दोनों के जरिए इस ममलिकत का दिफा करते हैं, अपना माल भी लगाते हैं और खुद भी जाते हैं लड़ाई में हिस्सा लेते हैं, और ये जो जिम्मी हैं इनको हम लड़ाई में नहीं बुलाते क्योंकि ये भी काफिर हैं और हम जिनसे लड़ रहे हैं वो भी काफिर हैं, तो जाहिर सी बात है इनका रुझान ज्यादा उनकी तरफ होगा भाई, लिहाजा हम इनको जान के साथ लड़ाई के लिए तो नहीं बुलाते, तो फिर उसके बदले में इनसे माल लिया जाएगा गाजियों की मदद के तौर पर और ममलिकत के दिफा के लिए भाई। तो कहते हैं वली अन्नहु वजब नुसरतन लिल मुकातिलती, मुकातिला भाई वो लड़ने वाले, वो जो मुजाहिदीन हैं और गाजी हैं भाई। तो कहते हैं वली अन्नहु वजब नुसरतन लिल मुकातिलती, और इसलिए क्योंकि जिजिया वाजिब हुआ है गाजियों की मदद के तौर पर। फतजिबू अल तफावती बिमंजिलती खराजिल अर्जी, तो लिहाजा ये जिजिया भी मुख्तलिफ होगा खराजुल अर्ज के दर्जे में, जिस तरह खराजुल अर्ज जो है वो जमीन के एतबार से मुख्तलिफ होता है, तो जिजिया भी उन काफिरों के मालदार और गरीब होने के एतबार से मुख्तलिफ होगा। यह माना है फताजिबू अला तफावती भी मंजिलती खराजिल अर्जी, तो यह जिजिया भी वाजिब होगा मुख्तलिफ होकर खराजुल अर्ज के दर्जे में। वहादा, और यह इस वजह से साहिब हिदायत ने कहा कि यह जिजिया क्यों वाजिब हुआ है, गाजियों की मदद के तौर पर। अब उसकी वजह जिक्र करें, वहां दाली अन्नहू वजबा बदलन आनी नुसरती बिन नफ्सी वल माल, वहां दाली अन्नहू वजबा, और इसलिए क्योंकि यह जिजिया जो है वाजिब हुआ है, बदलन आनी नुसरती बिन नफ्सी वल माली, जान और माल के जरिए नुसरत का बदल होकर। इन कुफार को भी ममलिकत का दिफा करना चाहिए था, इनको भी जान और माल के साथ नुसरत करनी चाहिए थी गाजियों की, लेकिन जान के साथ तो ये मदद कर नहीं सकते, इसलिए क्योंकि ये भी काफिर हैं और जिनसे हमारी लड़ाई है वो भी काफिर हैं, तो इनका मैलान उनकी तरफ होगा, लिहाजा इनको लड़ाई के लिए तो नहीं बुलाया जाएगा। अलबत्ता अब उसके बदले में ये सिर्फ माल के साथ मदद करेंगे भाई। ये माना है वहाद अली अनहु वजब बदलन अनी नुसरती बिन नफ्सी वल माली, और इसलिए क्योंकि जिजिया वाजिब हुआ है नफ्स और माल के जरिए मदद का बदल होकर। वजालिका यतफावतु बिकसरतिल वफरी वकिल्लतिही, और ये जान और माल से मदद करना तो मुख्तलिफ होता है माल की कसरत और किल्लत की वजह से। भाई देखिए, मुसलमानों पर लाजिम है कि वो माल और जान के साथ मुजाहिदीन की मदद करें भाई, लेकिन यह मदद करना भी मुख्तलिफ होता है। जो मालदार होता है वो मुजाहिदीन की मदद करता है अपनी जान और अपनी सवारी के साथ, और नीस इसी तरह वो अपने गुलाम भी साथ लेकर जाता है, जबकि जो मुतवस्सित दर्जे वाला होता है वो सिर्फ अपनी जान और अपनी सवारी के साथ मुजाहिदीन की मदद करता है, और जो गरीब होता है वो पैदल मुजाहिदीन की मदद करता है। तो जिस दर्जे का मुसलमान होता है उसी दर्जे की मदद उस पर लाजिम है भाई। तो जब जान और माल से मदद करना मुख्तलिफ है तो उसका जो बदल होगा यानी जिजिया वो भी मुख्तलिफ होगा। यह माना है वजालिका यतफावतु बिकसरतिल वफरी वकिल्लतिही, वफर भाई, वफर का माना भी कसरत भाई यानी माल वगैरह की कसरत, लेकिन यहां वफर से मुराद है माल भाई। वजालिका यतफावतु, और ये जो माल और जान से मदद करना है वो तो मुख्तलिफ होती है, बिकसरतिल वफरी वकिल्लतिही, माल की कसरत और किल्लत की वजह से। फकदा मा हुआ बदलुहू, तो इसी तरह जो इसका बदल है वो भी होगा, यानी इसका बदल जो है यानी ये जो जिजिया है वो भी मुख्तलिफ होगा माल की कसरत और किल्लत की वजह से। व मा रवाहु महमूल अला अन्नहु काना ज़ालिका सुलहन, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने दलील जिक्र की थी कि हुजूर ने हज़रत मुआज़ रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि उनमें से हर बालिग मर्द और औरत से एक दीनार या उसके बराबर कपड़ा लेना। तो हम उसका जवाब देते हैं कि ये जो आपने हदीस जिक्र की ये सुलह पर महमूल है, ये हदीस सुलह पर महमूल है, और इसकी दलील खुद इस हदीस में मौजूद है, क्योंकि हदीस में क्या आया, खुज मिन कुल्ले हालिमिन व हालिमतिन दीनारन, हर बालिग मर्द और औरत से एक दीनार लेना। हालांकि बिल इत्तेफाक औरतों से जिजिया नहीं लिया जाता क्योंकि वो लड़ाई ही नहीं कर सकती भाई। तवज्जो है, मालूम हुआ कि ये जो माल हुजूर अलैहिस्सलाम ने लेने का हुक्म दिया ये बतौर सुलह के था। तो कहते हैं वमा रवाहू, और वो हदीस जिसको इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने रिवायत फरमाया, महमूल अला अन्नहु काना ज़ालिका सुलहन, वो इस बात पर महमूल है कि वो सुलह थी, वो माल सुलह की वजह से था। वलिहादा अमरहू बिल अख्ज़ मिनल हालिमती, और इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने बालिगा औरत से भी लेने का हुक्म दिया। व इन कानत ला युख़ज़ मिनहल जिज़्यतु, अगरचे औरत से तो जिजिया नहीं लिया जाता। आगे देखिए, काला व तूज़ुल जिज़्यतु अला अहलिल किताब वल मजूस, यहां से साहिब हिदायत यह बयान फरमाएंगे कि किन पर जिजिया मुकर्रर किया जाएगा और किन पर जिजिया मुकर्रर नहीं किया जाएगा। साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि चाहे अहले किताब हो, चाहे बुत परस्त हो, चाहे मजूसी हो, सब पर जिजिया मुकर्रर किया जा सकता है, सिवाय मुशरिकीन अरब के, जो अरब के बुत परस्त हैं या जो मुर्तद हैं उन पर जिजिया मुकर्रर नहीं किया जाएगा, उनसे सिर्फ इस्लाम कबूल किया जाएगा या फिर उनके साथ लड़ाई की जाएगी और उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। तो कहते हैं काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं, व तू जउल जिजियतु अला अहलिल किताबी वल मजूसी, और जिजिया मुकरर किया जाएगा अहले किताब पर भी और मजूसियों पर भी। मजूसी भाई वो जो आतिश परस्त हैं, जो आग की इबादत करते हैं, तो अहले किताब और मजूसियों पर जिजिया मुकरर किया जाएगा। लिकौलिही तआला, अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से, मिनल लदीन उतुल किताब हत्ता युतुल जिजिया। भाई ये आयत का थोड़ा सा हिस्सा मतन में है, हाशिए में पूरी आयत दी हुई है, वो जरा देख लीजिए भाई। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, कातिलुल लदीन ला युमिनून बिल्लाही वला बिल यौमिल आखिरी, कि तुम लोग लड़ाई करो उन लोगों से जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं लाते, वला युहर्रिमूना, और वो हराम नहीं समझते, मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहू, जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया है। अल्लाह और उसके रसूल ने जिस चीज को हराम करार दिया है वह उसे हराम नहीं समझते, वला यदीनूना, और वो दीन नहीं मानते, दीन अल हक, दीन हक को, वला यदीनूना दीन अल हक, और वो दीन हक को अपना दीन नहीं मानते, मीनल लदीना। ये बयान आ गया, ये जो पीछे लोग जिक्र हुए जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं लाते और जो अल्लाह और रसूल के हराम की हुई चीजों को हराम नहीं समझते, और ये लोग जो दीन हक को अपना दीन नहीं मानते, ये कौन लोग हैं? मीन के जरिए बयान है, मीनल लदीन ऊतुल किताबी, यानी वो लोग जिनको किताब दी गई, यानी वो जो अहले किताब हैं। तो ये मीनल लदीन उतुल किताबा, ये बयान है, माकबल में जो पीछे अल्लदीन ला युमिनून वगैरह सारी सिफात जिक्र हुई थी, तो लिहाजा तर्जमे में इसको वहीं पर ले जाएं, वहीं पर जिसका ये बयान है, तो तर्जमा यूं करें, फिर सुने तर्जमा, कातिलुल लदीना, यहीं पर अब वो अहले किताब को ले आए, कातिलुल लदीना, क्या मोमिनो तुम लड़ाई करो उन अहले किताब से जो अल्लाह और आखरत के दिन पर ईमान नहीं लाते और जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया है उसे हराम नहीं समझते और दीन हक को अपना दीन नहीं मानते, इनसे तुम लड़ाई करो, हत्ता युतुल जिजिया, था यहां तक कि ये जिजिया अदा करें, आइया दिन अपने हाथ से, वहुम सागिरून, इस हाल में कि ये जलील हो, इस हाल में कि ये जलील हो, तो ये वहुम सागिरून ये हाल है, और ये तो अरबी में हम तर्जमा इस तरह करते हैं, इस हाल में कि वो जलील हो, उर्दू में तो इस तरह इस्तेमाल नहीं होता, तो बामुहावरा तर्जमा करने के लिए इसको माकबल जुमले के अंदर ही दाखिल कर देंगे, तो यूं तर्जमा करेंगे, हत्ता युतुल जिज़्याता अन यदिन वहुम सागिरून, यहां तक कि वो जलील होकर अपने हाथ से जिज़िया दें, यहां तक कि वो जलील होकर अपने हाथ से जिज़िया दें, यानी भाई देखो उनका माल है और वो आपके हवाले कर रहे हैं, उन्होंने मेहनत की, इस माल के जरिए उनकी जिंदगी थी, इसके जरिए वो अपने घरों के खर्चे चलाते हैं, लेकिन वो माल मुसलमानों के हवाले कर रहे हैं, इससे बड़ी और जिल्लत क्या होगी भाई। तो ये माना है, हत्ता युतुल जिज़्याता अन यदिन वहुम सागिरून, यहां तक कि वो जलील होकर अपने हाथ से जिज़िया अदा करें, माना समझ में आ गया। तो इस आयत से मालूम हुआ अहले किताब से जिजिया लेना जायज है भाई। अब मतन पर आइए, कहते हैं लिकौलिही ताला, अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से, मीनल लदीन उतुल किताबा, यानी वो लोग जिनको किताब दी गई, हत्ता युतुल जिजिया, था यहां तक कि वो जिजिया अदा करें, अल आयता ऐ इकरा इल आयता या अल आयतु मारूफतुन, आगे देखिए, वज़अ रसूलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलामु जिज़्यता अलल मजूसी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिज़्या मुकरर फरमाया, अलल मजूसी, मजूसियों पर। भाई आयत से अहले किताब का जिज़्या साबित हुआ और मजूसियों से भी जिज़्या लिया जाएगा, इसका पता हदीस से चला। तो कहते हैं, वज़अ रसूलुल्लाहि अलैहि सलातु वस्सलामु जिज़्यता अलल मजूसी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजूसियों पर जिज़्या मुकरर फरमाया। तवज्जो है, चुनाचे कहते हैं रिवायात में आता है कि हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो मजूसियों से जिजिया नहीं ले रहे थे, यहां तक कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आकर शहादत दी कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मजूसियों पर भी जिजिया मुकरर फरमाया था, तो फिर हज़रत उमर ने उन पर जिजिया मुकरर किया। आगे देखिए, काल वा अबदतिल औसानी मिनल अजमी, काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं कि जिजिया मुकरर किया जाएगा जो अजम के बुत परस्त हैं। अबदतिल अवसान, अवसान जमा है वसन की और वसन बुत को कहते हैं। तो कहते हैं वह अबदतिल अवसानी मीनल आजमी, और आजमियों में से जो बुत परस्त हैं, जो बुतों की इबादत करते हैं, जबकि अरब के जो बुत परस्त हैं उनसे जिजिया कबूल नहीं किया जाएगा। तो कहते हैं वह अबदतिल अवसानी मीनल आजमी, और जिजिया मुकरर किया जाएगा आजमी बुत परस्तों पर। वफी ही खिलाफ शाफी रहिमहुल्लाह ताला, और इसके अंदर इमाम शाफी रहमतुल्लाह का इख्तिलाफ है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अजमी बुत परस्त जो हैं उन पर जिजिया मुकर्रर नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको भी कत्ल किया जाएगा, या वो इस्लाम ले आए या उनको कत्ल किया जाएगा। तो कहते हैं वफी ही खिलाफ शाफी रहमतुल्लाह, इसमें इमाम शाफी रहमतुल्लाह का इख्तिलाफ है। हुआ यकूल, वो फरमाते हैं इन नल किताल वाजिब, उनके इनके साथ लड़ाई वाजिब है। लिकौल ही ताला, अल्लाह ताला की इस कौल की वजह से कि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वकातिलूहुम, कि इन कुफार से लड़ाई करो। इसमें अल्लाह ने तमाम कुफार से लड़ाई का हुक्म दिया है, लेकिन अहले किताब का इस्तिस्ना हो गया ऊपर आयत जिक्र हुई, और मजूसियों का इस्तिस्ना आ गया वो जो हदीस जिक्र हुई। तो बाकी सब उसी असल पर बाकी हैं, बाकी सबको कत्ल किया जाएगा भाई। तो कहते हैं अल्लाह के इस कौल की वजह से वकातिलूहुम इल्ला अन्ना आरफना, मगर यह कि हमने जान लिया जवाज तरकी ही, कि इस किताल को छोड़ना जायज है। फी हक अहलिल किताबी, अहले किताब के हक में हमने ये जान लिया कि अहले किताब के हक में उनसे लड़ाई छोड़ना जायज है। बिल किताबी, किसकी वजह से? किताबुल्लाह की वजह से। वफी हकिल मजूसी बिल खबरी, और मजूसियों के हक में खबर यानी हदीस के जरिए, हदीस के जरिए हमने जान लिया कि मजूसियों से किताल तर्क करना जायज है, यानी उनसे जिजिया लेना जायज है भाई। बात समझ में आगे, फिर जरा तर्जमा देख लीजिए। इल्ला अन्ना अरफना जवाज़ा तर्की ही फी हक अहलिल किताब बिल किताबी, मगर हमने किताबुल्लाह के जरिए अहले किताब से लड़ाई के छोड़ने के जायज होने को जान लिया। वफी हक इल मजूसी बिल खबरी, और मजूसियों के हक में लड़ाई छोड़ने के जवाज को हमने खबर यानी हदीस के जरिए जान लिया। फबकिया मवारा अहम अलल असली, तो जो इनके अलावा हैं वो इसी असल पर बाकी रहे कि उनसे लड़ाई की जाएगी। वलाना, अब हमारी दलील आ गई। वलाना, और हमारी दलील यह है कि अन्नहु यजूज उस्तिरकाकुहुम, कि ये जो अजमी बुत परस्त हैं इनको गुलाम बनाना जायज है। तो जब इनको गुलाम बनाना जायज है, फयजूज उजर बुलजिजियति अलैहिम, तो इन पर जिजिया मुकरर करना भी जायज है। इस कुल्लु वाहिदिम मिन्हुमा यश्तमिलु अला सल्बिन नफ्सि मिन्हुम, इसलिए क्योंकि इन दोनों में से हर एक इनकी जान की नफी पर मुश्तमिल है। सल्बुन नफ्स, नफ्स की नफी, जान की नफी पर मुश्तमिल है भाई। देखो, गुलाम भी जो है, गुलाम के इख्तियारात खत्म हो जाते हैं, गुलाम के सारे मुनाफे का मालिक आका बन जाता है। तो गोया आपने उसकी जान की नफी कर दी, आपने उसकी जान की नफी कर दी, उसके सारे इख्तियार भी आका के हाथ में आ गए और उसके सारे मुनाफे भी आका के हाथ में आ गए। तो गोया गुलाम की जान की नफी कर दी, गोया वो मुर्दों की तरह ही है भाई। किसकी तरह है? मुर्दों की तरह है, आप उसकी जान के मालिक बन गए। इसी तरह जिजिया के अंदर भी है। देखो, ये जो कुफार पर जिजिया मुकरर होता है, ये तो इनकी अपनी कमाई है और ये कमाई उनकी जिंदगी का सबब है, इसके जरिए वो अपने और अपने घर वालों का खर्चा चलाते हैं। तो जब आप उनसे ये कमाई जो इनके अपनी जिंदगी का सबब थी, तो जब ये आप उनसे ले लेते हैं बतौर जिजिया के, तो गोया आपने इनसे इनकी जान ले ली, क्योंकि यही माल इनकी जिंदगी का सबब था। तो आपने जब उनसे ले लिया, तो गोया आपने उनसे उनकी जान की नफी कर दी। या यूं कहो कि जैसे कि जैसे गुलाम बना लिया जाए तो इसमें बे इंतहा दर्जे की जिल्लत है। इसी तरह जब आप किसी से माल लेते हैं, वो माल जिसके जरिए वो अपने खर्चे पूरे करता है और वो माल जब वो आपको देता है तो इससे बढ़कर और क्या जिल्लत होगी भाई। तो मालूम हुआ गुलाम बनाने में भी उसकी जिल्लत है और जिजिया देने में भी उसकी जिल्लत है भाई। तो कहते हैं फयजूज़ु ज़र्बुल जिज़्यति अलैहिम, तो ये जो अजमी बुत परस्त हैं इन पर भी जिजिया मुकरर करना जायज है। इद कुल्लु वाहिदिम मिन्हुमा, इसलिए क्योंकि जिजिया और गुलाम बनाना इन दोनों में से हर एक जो है, यश्तमिलु अला सल्बिन नफ्सि मिन्हुम, वो इनसे जान छीन लेने पर मुश्तमिल है। वह आपने इनसे इनकी जान छीन ली, आप उस पर काबिज हो गए। फइन्नहु यक्तसिबु व युअद्दी इलल मुस्लिमीना, इसलिए क्योंकि वो कमाता है और मुसलमानों को देता है। व नफकतुहू फी कस्बी ही, इस हाल में कि उसका अपना खर्चा भी अपनी कमाई में होता है, उसका अपना खर्चा भी अपनी कमाई में है और वो कमाकर किसको दे रहा है, मुसलमानों को दे रहा है। तो गोया आपने उससे उसकी जान छीन ली है, आप उस पर काबिज हैं भाई। आगे देखिए, व इन जुहिरा अलैहिम कबला जालिका, और अगर इन कुफार पर गलबा पा लिया गया कबला जालिका जिजिया अदा करने से पहले ही, फहुम व निसा उहुम व सिबियान उहुम फै उन, तो ये कुफार जो हैं, व निसा उहुम और इनकी जो औरतें हैं, व सिबियान उहुम और इनके जो बच्चे हैं, फै उन वो माले गनीमत हैं, ये माले गनीमत है अगर इन पर कब्जा पा लिया गया। लिजवाज इस्तिरकाकहिम, इसलिए क्योंकि इनको गुलाम बनाना जायज है। वला तूज़ौ अला अबदतिल औसानी मिनल अरबी वलल मुर्तदीन, और जिजिया मुकरर नहीं किया जाएगा अला अबदतिल औसानी मिनल अरबी, अरब के बुत परस्तों पर यानी अरब के मुशरिकीन पर, वलल मुर्तदीन और ना ही मुर्तदों पर, अरब के मुशरिकीन और मुर्तदों पर जिजिया मुकरर नहीं किया जाएगा, उनसे सिर्फ इस्लाम कबूल किया जाएगा या उनसे लड़ाई की जाएगी और उन्हें कत्ल किया जाएगा। लिअन्ना कुफ्रहुमा कद तगल्लज़ा, यहां से दोनों की दलील जिक्र कर रहे हैं भाई कि ये मुशरिकीन अरब और मुर्तदीन को क्यों कत्ल किया जाएगा। तो बतलाएंगे आपको कि इन दोनों का कुफर ज्यादा सख्त है भाई। वजह यह कि मुशरिकीन अरब हुजूर अलैहिस्सलाम इन्हीं के दरमियान तशरीफ लाए भाई, और इन्हीं के दरमियान हुजूर अलैहिस्सलाम जवान हुए और उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी को अपने सामने अपनी आंखों से देखा, और नीज इन्हीं की जुबान में कुरान नाजिल हुआ, और कुरान फसाहत और बलागत के एतबार से हुजूर अलैहिस्सलाम का मौजजा है भाई। तो ये अरबी जुबान बोलने वाले हैं, अरबी जानने वाले हैं, कुरान की फसाहत और बलागत से पता चल जाता है कि कोई इंसान ऐसे कलाम पर कादिर नहीं है, इसके बावजूद ये ईमान नहीं लाते, तो लिहाजा इनका कुफर सख्त है, तो इनको सजा भी सख्त दी जाएगी। और इसी तरह मुर्तद जो है उसका कुफर भी सख्त है, इसलिए क्योंकि अल्लाह ने उसको इस्लाम की दौलत नसीब फरमाई थी और यह इस्लाम की खूबियों पर मुत्तले था, इसके बावजूद ये इस्लाम को छोड़कर कुफर की तरफ गया है, तो इसका कुफर भी सख्त है। लिहाजा इनसे सिर्फ इस्लाम कबूल किया जाएगा या तलवार के साथ इनका मुकाबला किया जाएगा और इन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। तो कहते हैं लिअन्ना कुफ्रहुमा कद तगल्लज़ा, इसलिए क्योंकि इन दोनों का कुफर जो है वो तहकीक सख्त है। अम्मा मुशरिकुल अरबी, तो मुशरिकीन अरब जो हैं, फलिअन्ना नबी अलैहि सलातु वस्सलामु नशा बैन अज़हुरिहिम, इसलिए क्योंकि हुजूर अलैहि सलाम ने परवरिश पाई इनके सामने, नशा अयनशाउ के माने परवरिश पाना, जवान होना। फली अन्न नबी अलैहि सलातु वस्सलामु नशा बैन अज़हुरिहिम, इसलिए क्योंकि हुजूर अलैहि सलाम ने इनके सामने परवरिश पाई। वल कुरान नज़ला बिलुगतिहिम, और इसलिए क्योंकि कुरान इन्हीं की जुबान में नाजिल हुआ है। फल मुअजिज़तु फी हक़िहिम अज़हरु, तो ये मुअजिज़ा इनके हक में ज्यादा जाहिर है, लिहाजा इनका कुफर भी सख्त हुआ। व अम्मल मुर्तद, और बाकी मुर्तद जो है, फली अन्नहु कफ़रा बिरब्बिही, इसलिए क्योंकि उसने अपने रब का कुफर किया। बाद मा हुदिया लिल इस्लामी, बाद इसके कि जब इसकी इस्लाम की तरफ रहनुमाई कर दी गई थी। वकफा अला महासिनी, और बाद इसके कि जब ये इस्लाम की खूबियों पर वाकिफ हो चुका था। फला युकबलु मिनल फरीकैनी, लिहाजा इन दोनों फरीकैन से कबूल नहीं किया जाएगा। इल्लल इस्लामु अवि सैफु, या सिर्फ इस्लाम या तलवार, इनसे सिर्फ इस्लाम या तलवार ही कबूल होगा, यहां जिजिये की गुंजाइश नहीं है भाई। तो कहते हैं फला युकबलु मिनल फरीकैन इल्लल इस्लामु अवि सैफु, तो दोनों फरीकों से इस्लाम या तलवार के अलावा और कोई चीज कबूल नहीं की जाएगी। ज़ियादतन फिल उकूबति, सजा में ज्यादती करते हुए। وعند الشافعي رحمه الله تعالى يسترق مشرك العربي, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक अरब के मुशरिकीन को गुलाम बनाया जा सकता है। وجوابه ما قلنا, और जवाब इसका वो है जो हमने कह दिया कि इनका कुफर सख्त है, लिहाजा इनको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। आगे देखिए वइदा ज़ुहिरा अलैहिम, और जब इन पर गलबा पा लिया गया यानी मुशरिकीन अरब पर। फनिसाउहुम वसिबियानुहुम फैउन, तो इनकी औरतें और इनके जो बच्चे हैं वो माले फै हैं यानी माले गनीमत हैं। लिअन्ना अबा बकरिन सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसलिए क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस तरह का निस्वान बनी हनीफिन कि उन्होंने गुलाम बना लिया था बनू हनीफ की औरतों को। यहां भाई मेरी किताब में है बनी हनीफ भाई, लेकिन हिदायत के दीगर नुस्खों में है बनी हनीफता, बनी हनीफता, और यही दुरुस्त है भाई कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस तरह का निस्वान बनी हनीफता कि उन्होंने बनू हनीफा की औरतों को गुलाम बना लिया था। वसिबियानहुम, और उनके बच्चों को। लम्मर्तदू, जब वो बनू हनीफा वाले मुर्तद हुए। वक़सामहुम बैनल गानिमीना, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इनके औरतों और बच्चों को गाजियों के दरमियान तकसीम कर दिया था। वमन लम युस्लिम मिन रिजालिहिम, और इनके मर्दों में से जो मुसलमान नहीं होगा यानी मुशरिकीन अरब के लोगों में से, मर्दों में से जो मुसलमान नहीं होगा, कुतिला, उसको कत्ल कर दिया जाएगा। लिमा जकर ना, उस वजह से जो हमने जिक्र कर दिया कि इनका कुफर सख्त है, लिहाजा या सिर्फ इस्लाम या तलवार के साथ इनका फैसला होगा। आगे देखिए वला जिज़्यता अलम मरअतिन वला सबीयिन, और किसी औरत या किसी बच्चे पर जिज़्या नहीं है। लिअन्नहा वजबत बदलन अनिल कत्ल औ अनिल क़िताल, इसलिए क्योंकि जिज़्या जो है कत्ल या क़िताल का बदल होकर वाजिब होता है। ये जिज़्या कत्ल या क़िताल का बदल होकर वाजिब होता है। कत्ल का बदल भाई, ये कुफार हैं, ये तो कत्ल के मुस्तहिक थे, तवज्जो है, और हमने इनको कत्ल नहीं किया तो इनसे अब जिजिया लिया जाएगा। तो ये जिजिया किसका बदल है? इनके कत्ल का, यानी इनकी इस्मत का, कि इनको हमने इस्मत दे दी, तवज्जो है। तो ये जिजिया बदल है इनके कत्ल का, या ये जिजिया बदल है इनके किताल का। ये ममलिकत इस्लामिया में रहते हैं तो इन पर जरूरी था कि ये ममलिकत के दिफा के अंदर ये भी लड़ाई के अंदर हिस्सा लें, लेकिन लड़ाई के अंदर अपनी जानों के जरिए जब ये मुजाहिदीन की मदद नहीं कर सकते तो फिर इनसे माल लिया जाता है। तवज्जो है, मालूम हुआ ये जिजिया या तो इनके कत्ल का बदल है या इनके किताल यानी इनकी लड़ाई का बदल है। ये लड़ाई नहीं कर रहे तो उसके बदले में माल दे दें। तवज्जो है, बात चल रही है कि औरत पर भी जिजिया नहीं और बच्चे पर भी जिजिया नहीं, क्योंकि ये जिजिया किसका बदल है? कत्ल का या किताल का। लेकिन औरत और बच्चे को तो कत्ल भी नहीं किया जा सकता, लिहाजा ये उनके कत्ल से भी बदल नहीं बन सकता, और औरत और बच्चा तो लड़ाई भी नहीं कर सकते तो इनके किताल से भी ये बदल नहीं हो सकता। तो कहते हैं लिअन्नहा वजबत बदलन अनिल कत्ल औ अनिल किताल, और इसलिए क्योंकि जिजिया जो है वाजिब हुआ है इनके कत्ल या इनकी लड़ाई से बदल होकर। वहुमा ला युक्तलानी वला युकातिलानी, और ये औरत और बच्चा जो है न तो इनको कत्ल किया जाता है, वला युकातिलानी, और ना ये लड़ाई कर सकते हैं। तवज्जो है, तो ये जिजिया किसका बदल था? या तो इनके कत्ल का या इनकी लड़ाई का। और जब इनके अंदर असल नहीं है, इनको कत्ल भी नहीं किया जा सकता और ये लड़ाई भी नहीं, तो जब इनके अंदर असल नहीं है तो उसका बदल यानी जिजिया भी नहीं आएगा। तो कहते हैं वहुमा ला युक्तलानी वला युकातिलानी लि अदमिल अहलियति, और ये दोनों न कतल किए जाते हैं और ना ये लड़ाई कर सकते हैं, लि अदमिल अहलियति, इसलिए क्योंकि इनमें लड़ाई की अहलियत ही नहीं है। काला वला जमीनी वला आमा, जमीन कहते हैं अपाहज और माजूर भाई, जिसके हाथ या पांव वगैरह ना हो भाई, उसको जमीन कहते हैं जा के साथ। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वला जमीनी वला आमा, और ना ही अपाहज पर और ना ही अंधे पर, इन पर भी जिजिया नहीं है। व कदल मफलूज व शेखुल कबीर उलिमा बैयन्ना, साहिब हिदाया फरमा रहे हैं व कजल मफलूज, और इसी तरह है मफलूज आदमी भी। मफलूज यानी जिसको फालिज वगैरह हुआ है, जो चल फिर नहीं सकता भाई, कहते हैं वकदल मफलूजू, और इसी तरह है फालिज वाला भी। व शेखुल कबीरू, और बहुत बूढ़ा आदमी भी। लिमा बैयन्ना, उस वजह से जो हमने बयान कर दिया कि ये कत्ल का बदल है या ये लड़ाई का बदल है, और ये जो अपाहज अंधा या बहुत बूढ़े लोग हैं इनको तो कत्ल भी नहीं किया जाता और नीज ये लड़ाई भी नहीं कर सकते, तो जिजिया तो इन्हीं के बदल के तौर पर वाजिब था, तो जब असल नहीं तो बदल भी नहीं आएगा भाई। वान अबी यूसुफ रहिमहुल्लाह, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से रिवायत है कि अन्नहु तजिबु इजा कान लहू मालुन, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं अगर कोई बहुत बूढ़ा शख्स है और मालदार है तो फिर उस पर जिजिया वाजिब होगा। कहते हैं वजह यह कि मजमूही एतबार से बूढ़े को कत्ल करने की भी एक सूरत है, वो आप पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर कोई ऐसा बूढ़ा है जो लड़ाई में जिसका तजर्बा है और मुश्रिकीन की मदद करता है, उनको मशवरे देता है, तो इस बूढ़े को भी कत्ल करना जायज है भाई। तवज्जो है, तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मजमू एतबार से बाज सूरतों में बूढ़े को कत्ल करना जायज है, लिहाजा इस पर जिजिया भी वाजिब किया जा सकता है इसके कत्ल का बदला करार देते हुए भाई। तो कहते हैं वान अबी यूसुफ रहमला, और इमाम अबू यूसुफ रहमला से रिवायत है अन्नहु तजिबु इजा कान लहु मालुन, कि जिजिया वाजिब होगा बहुत बूढ़े शख्स पर भी जब उसके पास माल हो। ले अन्नहु युक्तलु फिल जुमलति इजा कान लहु रायुन, इसलिए क्योंकि इसको भी मजमूई एतबार से कत्ल किया जाता है। इजा कान लहु रायुन, जब इसकी राय हो यानी जंग के बारे में मशवरे देता हो। वला अला फकीर इन गैर मुअतमिलिन, और इसी तरह जिजिया नहीं है उस फकीर यानी उस गरीब आदमी पर, गैर मुअतमिलिन, जो कामकाज नहीं कर सकता, जो कामकाज नहीं कर सकता उस पर भी जिजिया नहीं है भाई। चुनांचे रिवायात में आता है भाई, सहाबा अजीब लोग हैं भाई, इंसान सुनता है उनकी बातें हैरान रह जाता है, कि हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन थे, उन्होंने एक बूढ़े जिम्मी को मांगते हुए देखा, बूढ़े जिम्मी को मांग रहा है, सवाल कर रहा है, मांगता फिर रहा है, तो कहने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों मांग रहे हो। कहने लगा कि हमारे पास तो माल नहीं है लेकिन हमसे भी जिजिया लिया जाता है, तो मैं माल जमा कर रहा हूं उसके लिए। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला उन्होंने ये बात सुनी तो चौंक उठे और अजीब जुमला फरमाया, कहने लगे हमने तुम लोगों से इंसाफ नहीं किया, हमने तुम लोगों से इंसाफ नहीं किया। और फिर उसके बाद सारे गवर्नरों को हुक्म दे दिया कि आज के बाद जो ज्यादा बूढ़ा जिम्मी हो उससे भी जिजिया नहीं लिया जाएगा भाई। तो कहते हैं वला अला फकीर इन गैर मुअतमिलिन, और इसी तरह जिजिया उस फकीर पर भी नहीं होगा जो कामकाज नहीं कर सकता। खिलाफन लिशाफिई रहिमहुल्लाह, बखिलाफ इमाम शाफी रहमतुल्लाह के, लहू इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील जो है इतलाकु हदीस मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो हजरत मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस का मुतलक होना है। वो फरमाते हैं हजरत मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस मुतलक है, उसमें हुजूर ने एक दीनार या उसके बराबर कपड़ा लेने का हुक्म दिया और कोई कैद नहीं लगाई कि काम करने वाला हो तो फिर उससे जिजिया लो और जो काम नहीं कर सकता उससे जिजिया ना लो। तो कहते हैं लहू इतलाकु हदीस मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील हजरत मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस का मुतलक होना है। वलना, और हमारी दलील यह है कि अन्ना उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु लम युवज़िफ़हा अला फकीर गैर मुअतमिलिन, यहां हजरत उस्मान का जिक्र आया, याद रखो इससे मुराद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु नहीं है, बल्कि वही हजरत उस्मान इब्ने हुनैफ रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं जिनको हजरत उमर ने भेजा था सवाद इराक की पैमाइश के लिए और उन पर जिजिया और खराज मुकर्रर करने के बारे में। तो कहते हैं वलाना हमारी दलील जो है अन उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु लम युवज़िफ़हा, कि हज़रत उस्मान इब्ने हुनैफ रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह जिजिया मुकर्रर नहीं फरमाया अला फकीर इन गैरी मुअतमिलिन, ऐसे फकीर पर जो काम काज नहीं कर सकता। वज़ालिका बिमहज़रिन मिना सहाबती, और यह चीज सहाबा की मौजूदगी में हुई थी, मालूम है इस पर सहाबा का इजमा हो गया कि जो फकीर काम काज नहीं कर सकता उसे जिजिया नहीं लिया जाएगा। वली अन खराज अल अर्जी ला युवज़फ़ु अला अर्जिन, यहां से अकली दलील जिक्र करें साहिब हिदाया, कहते हैं वली अन खराज अल अर्जी इसलिए क्योंकि जमीन का जो खराज है ला युवज़फ़ु अला अर्जिन ला ताकत लहा, वो ऐसी जमीन पर मुकर्रर नहीं किया जाता जिसमें ताकत ना हो। खराज उसी जमीन पर मुकर्रर किया जाता है जिसमें पैदावार की ताकत है, जिस जमीन के अंदर ताकत ही नहीं है, वो पैदावार ही नहीं देती, तो उस पर खराज भी मुकर्रर नहीं होता। तो जैसे खराजुल अर्ज वो पैदावार वाली जमीन पर मुकर्रर होता है, तो ये जो जिजिया है यानी खराजुल रस जो है ये भी जिसमें काम काज करने की और कमाने की कुव्वत हो उस पर मुकर्रर किया जाएगा। तो कहते हैं वली अन्ना खराजल अर्जी ला युवज़फ़ु अला अर्जिन ला ताकत लहा, और इसलिए क्योंकि जमीन का जो खराज है वो उस जमीन पर मुकर्रर नहीं किया जाता जिसमें ताकत ना हो। फकदा हादल खराजू, तो इसी तरह ये वाला खराज यानी खराजु रस भी होगा यानी जिजिया भी इसी तरह होगा। वल हदीस महमूल अलल मुअतमिली, और वो हदीस महमूल है मुअतमिल यानी काम काज करने वाले पर, यानी जो हुजूर ने हुक्म दिया था कि हर एक से एक दीनार या इसके बराबर कपड़ा लो, उससे काम काज करने वाले ही मुराद हैं भाई। तो कहते हैं वल हदीस महमूल अलल मुअतमिली, और ये हदीस महमूल है काम काज करने वाले पर। वला यूज़ा अलल ममलूक वल मुकातबी वल मुदब्बरी व उम्मिल वलदी, भाई ये जिम्मियों के गुलाम हैं, कोई आम गुलाम है या मुकातब उम्मे वलद या मुदब्बर वगैरह हैं, क्या उन पर जिजिया मुकरर किया जाएगा? कहते हैं नहीं, उन पर भी जिजिया मुकरर नहीं किया जाएगा। तो कहते हैं वला यूज़ा अलल ममलूक वल मुकातबी वल मुदब्बरी व उम्मिल वलदी, तो लिहाजा जिजिया मुकरर नहीं किया जाएगा इन जिम्मियों के ममलूक पर यानी गुलामों पर। वल मुकातबी वल मुदब्बरी व उम्मिल वलदी, और इनके मुकातब और मुदब्बर और उम्मे वलद पर। لأنه بدل عن القتل في حقهم وعن النصرة في حقنا, भाई याद रखो ये जो जिजिया लिया जाता है कुफार से ये इनके हक में ये कत्ल का बदल है, ये तो कत्ल के मुस्तहिक हो चुके थे लेकिन हमने इनको कत्ल नहीं किया, तो ये कत्ल के बदले के तौर पर हमें जिजिया देते हैं, और हम जो इनसे जिजिया लेते हैं वो नुसरत के बदले के तौर पर लेते हैं कि इनका काम था ममलिकत के दिफा के अंदर अपनी जान और माल लगाते, तो जान और माल के बदले में अब हम सिर्फ इनसे बतौर नुसरत के जिजिया लेते हैं। तवज्जो है, तो जिम्मी जो जिजिया देते हैं उनकी तरफ से देखें तो वो अपने कत्ल के बदले में जिजिया दे रहे हैं, और हमारी तरफ से देखें तो हम इनकी नुसरत के बदले में जिजिया ले रहे हैं। तवज्जो है, तो बात चल रही है इन जिम्मियों के गुलामों की, तो जिम्मियों के गुलाम जो हैं वो भी बालिग हैं, वो भी इनके मददगार थे, वो भी कत्ल के मुस्तहिक हो चुके थे लेकिन हमने उनको कत्ल नहीं किया, तो कत्ल के बदल के तौर पर देखा जाए तो जिजिया इन पर आना चाहिए। इनको कत्ल नहीं किया गया तो इन पर क्या आना चाहिए? जिजिया। लेकिन हम जो जिजिया लेते हैं वो इनकी मदद के बदले में लेते हैं, और मदद तो इन गुलामों पर वाजिब नहीं क्योंकि मदद पर तो ये कादिर ही नहीं है, ये तो अपने आका की इजाजत के बगैर लड़ाई नहीं कर सकते। तो नुसरत से बदल होने के एतबार से देखा जाए तो इन गुलामों पर जिजिया नहीं आना चाहिए। तवज्जो है, यह जिजिया बदल होता है कत्ल से भी और नुसरत से भी। कत्ल से बदल होने के एतबार से देखा जाए तो यह भी कत्ल के मुस्तहिक थे लेकिन इनको कत्ल नहीं किया गया, तो यह तकाजा करते हैं इन पर जिजिया आना चाहिए। और दूसरी तरफ देखा जाए कि यह जिजिया नुसरत से भी बदल है, तो नुसरत पर तो यह गुलाम कादिर ही नहीं, क्योंकि बगैर आका की इजाजत के गुलाम लड़ाई नहीं कर सकते। तो यह नुसरत से बदल होना यह तकाजा करता है कि इन पर जिजिया नहीं आना चाहिए। तो एक चीज तकाजा कर रही है जिजिया आना चाहिए, दूसरी चीज तकाजा कर रही है कि जिजिया नहीं आना चाहिए, तो जिजिया के वाजिब होने में शक आ गया और शक की वजह से इन पर जिजिया वाजिब करार नहीं दिया जा सकता। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं लिअन्नहु बदलुनानिल क़त्ल फी हक़िहिम, इसलिए क्योंकि ये जो जिजिया है ये कुफार के हक में उनके कत्ल से बदल है। वानी नुसरत फी हक़िना, और हमारे हक में यह नुसरत से बदल है। वअलअतबार इसानी, और दूसरी चीज के एतबार से यानी नुसरत से बदल होने के एतबार से ला तजिबू, जिजिया वाजिब नहीं होता क्योंकि ये गुलाम तो नुसरत पर कादिर ही नहीं है, तो जिजिया यहां नुसरत से बदल हो ही नहीं सकता। तो कहते हैं वाला अतबार इसानी, और दूसरी चीज यानी नुसरत से बदल होने के एतबार से ला तजिबू, जिजिया वाजिब नहीं होता। फला तजिबू भी शक की, तो लिहाजा शक की वजह से जिजिया वाजिब नहीं होगा भाई। वला युअद्दी अनहुम मवालीहिम, और न अदा करेंगे इनकी तरफ से इनके आका भाई। गुलाम जो हैं जिम्मियों के आम गुलाम हैं, मुकातब हैं या उम्मे बलद वगैरह, इन पर तो जिजिया नहीं आया, तो क्या इनके मालिकों से वसूल करेंगे यानी इनका जिजिया? कहते हैं नहीं भाई, इनके मालिकों से इनकी वजह से आप पहले ही ज्यादा जिजिया वसूल कर रहे हैं क्योंकि जिसके गुलाम होंगे मालूम हुआ वो खूब मालदार है तो उससे तो 48 दिरहम साल के लिए जाएंगे, तो गुलामों की वजह से हम पहले ही इनसे ज्यादा जिजिया ले रहे हैं। तो अगर आप गुलामों का भी इन पर वाजिब कर दिया जाए ये तो गोया एक ही सबब की वजह से आप दुगना वसूल कर रहे हैं भाई, लिहाजा इनके आका जो है उनसे भी इन गुलामों का जिजिया वसूल नहीं किया जाएगा भाई। तो कहते हैं वला युअद्दी अनहुम मवालीहिम, और इन गुलामों की तरफ से भी इनके आका जिजिया अदा नहीं करेंगे। लिअन्नहुम तहम्मलु ज़ियादता, इसलिए क्योंकि इनके आकाओं ने इस ज्यादती को बर्दाश्त किया। बिसबबिहिम, इन गुलामों की वजह से। आगे देखिए वला तूज़ऊ अला रुहबान अल्लज़ीना ला युखालितूना नासा, और जिजिया मुकर्रर नहीं किया जाएगा उन राहिबों पर जो लोगों से इख्तिलात नहीं करते। रुहबान जमा है राहिब की भाई, राहिब वो लोग भाई ईसाइयों में से वो लोग जो लोगों से अलग थलग गोशा नशीन हो जाते और हर वक्त अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते, इनको राहिब कहा जाता था। तो क्या इन राहिबों से जिजिया लिया जाएगा या नहीं? कहते हैं वो राहिब जो गोशा नशीन है, जो लोगों से मिलते जुलते नहीं है, अलग थलग जो है इबादतों के अंदर शबोरोज मसरूफ रहते हैं, उनसे भी जिजिया नहीं लिया जाएगा। तो कहते हैं वला तूज़ऊ अला रुहबानिल लदीना, और जिजिया मुकर्रर नहीं किया जाएगा उन राहिबों पर। अल्लदीना ला युखालितूना नासा, जो लोगों से मिलते जुलते नहीं है। कदा दकारा हा हुना, इसी तरह जिक्र किया है साहिब कुदूरी ने यहां पर। साहिब कुदूरी ने यही जिक्र किया कि राहिबों पर जिजिया मुकर्रर नहीं किया जाएगा। वदा करा मुहम्मदुन रहिमहुल्लाहु अन अबी हनीफता रहिमहुल्लाह, और इमाम मोहम्मद रहमला ने इमाम अबू हनीफा रहमला से नकल करते हुए जिक्र किया है कि अन्नहु तूज़ऊ अलैहिम, कि इन राहिबों पर भी जिजिया मुकर्रर किया जाएगा। इज़ा कानू यक़दिरून अलल अमली, जब ये काम काज पर कादिर हों। वह हुआ कौलू अबी यूसुफ रहमहुल्ला, और यही कौल है इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला का भी। वजहुल वज़ई अलैहिम, तो मालूम हुआ दो कौल आ गए। मतन के अंदर आया राहिबों पर जिजिया नहीं आएगा, जबकि इमाम मोहम्मद रहमहुल्ला इमाम साहब से नकल करते हैं, और इसी तरह इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला भी यही फरमाते हैं कि राहिब अगर काम काज पर कादिर हो तो उन पर भी जिजिया मुकर्रर किया जाएगा। तो अब उसकी वजह जिक्र करने लगे हैं। कहते हैं वजहुल वज़ई अलैहिम, इन राहिबों पर जिजिया मुकर्रर करने की वजह यह है कि अनल कुदरता अलल अमली, के काम काज पर कादिर होना। हुवल लदी ज़य्याहा, उसको इसी शख्स ने जाया कर दिया। यह राहिब तो काम काज पर कादिर था, तो काम काज पर कुदरत को इसने खुद ही जाया किया है, लिहाजा इससे जिजिया लिया जाएगा। तो कहते हैं अनल कुदरता अलल अमली हुवल लदी ज़य्याहा, इसलिए क्योंकि काम काज पर कुदरत जो है उसको इसने खुद ही जाया कर दिया। फसार कतातील अर्ज़िल खराजियती, तो ये इसी तरह हो गया जैसे खराजी जमीन को बेकार छोड़ देना। खराजी जमीन को मुअत्तल कर देना यानी उसको बेकार छोड़ देना और उसके अंदर तो खराज आता है, तो यहां इस राह पर भी जिजिया आएगा भाई। वह वजहुल वज़ई अनहुम, और इनसे जिजिया साकित करने की वजह भाई देखो, वज़ा यज़ाऊ का सिला अला आए तो इसका माना है मुकरर करना, पीछे आया वजहुल वज़ई अलैहिम इन पर जिजिया मुकरर करने की वजह, और अब आया वो वजहुल वज़ई अनहुम, यहां अन सिला आया और वजा का सिला अन आए तो इसका माना है साकित करना और खत्म करना। मतन में तो आया था कि इन राहिबों पर जिजिया नहीं होगा, तो अब उसकी वजह जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं वो वजहुल वज़ई अनहुम, और इनसे जिजिया खत्म करने और उसको साकित करने की वजह यह है कि अन्नहु ला कतला अलैहिम, कि इन पर कतल नहीं है, इनको कतल नहीं किया जाता, इजा कानू ला युखालितून अन्नासा, जब ये लोगों से मिलते जुलते नहीं है तो इनको कत्ल नहीं किया जाता, और ये जिजिया किसका बदल है, कत्ल ही का तो बदल है कि इनको हमने कत्ल नहीं किया, तो इन राहिबों को जब कत्ल नहीं किया जाता तो उसका बदल जिजिया भी इन पर नहीं आएगा। तो कहते हैं अन्नहु ला कत्ला अलैहिम, के इन पर कत्ल नहीं है, इदा कानू ला युखालितून अन्नासा, जब ये लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, वल जिज़यतु फी हक़िहिम लिइस्क़ातिल क़त्ल, और कुफार के हक में जो जिजिया होता है वो उनके कत्ल को साकित करने की वजह से होता है, और इनके हक में तो कत्ल ही नहीं है, लिहाजा इन पर जिजिया भी नहीं है। वला बुद्द अन यकून अल मुअतमिलु सहीहन, और यह भी जरूरी है कि वो काम काज करने वाला तंदुरुस्त हो, अगर काम काज करने वाला बीमार है तो फिर उस पर भी जिजिया नहीं आएगा, और इसमें अक्सर साल का एतबार है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हर एक साल में कुछ ना कुछ बीमार हो जाता है, लेकिन अगर साल के अक्सर हिस्से में वो तंदुरुस्त है वो काम काज करने वाला तो उस पर जिजिया वाजिब होगा। तो कहते हैं वला बुद्द अन यकून अल मुअतमिलु सहीहन, और जरूरी है कि काम काज करने वाला फकीर जो है वह तंदुरुस्त हो, व युक्तफा बिसेहतिही फी अक्सरी सनती, और साल के अक्सर हिस्से में उसके तंदुरुस्त होने पर इक्तिफा किया जाएगा, साल के अक्सर हिस्से में अगर वो सही और तंदुरुस्त है तो उस पर इक्तिफा किया जाएगा और इसको जिजिया देना पड़ेगा। आगे देखिए भाई, वमन अस्लमा व अलैही जिजियतुन सकतत, सूरत मसला ये कि एक जिम्मी जो है उस पर जिजिया वाजिब हो गया था, साल गुजर गया है और फिर वो शख्स मुसलमान हो गया तो याद रखो जिजिया साकित हो जाएगा। तो कहते हैं वमन असलम व अलैही जिजियतुन, और जो शख्स मुसलमान हुआ और उस पर जिजिया वाजिब था सकाता, तो वो जिजिया साकित हो गया। व कदालिका इदा माता काफिरन, और इसी तरह है जब वो शख्स मर गया काफिर होने की हालत में, एक शख्स पर जिजिया था लेकिन अदायगी से पहले ही वो मर गया, तो अब ये नहीं कि उसके माल में से जिजिया वसूल किया जाएगा बल्कि वो जिजिया साकित हो गया। तो कहते हैं वकदालिका इदामा तकाफिरन, और इसी तरह है यानी जिजिया साकित हो जाएगा जब वो शख्स काफिर होने की हालत में मर गया, खिलाफन लिशाफिई रहमहुल्लाह तआला फीहिमा, बखिलाफ इमाम शाफी रहमहुल्लाह के इन दोनों के अंदर, यानी उनके नजदीक जिजिया साकित नहीं होगा। वो फरमाते हैं कि ये जो जिजिया है ये इस्मत का बदल है या सुकना का बदल है, तो जब इस शख्स ने मुअव्वज वसूल कर लिया तो अब इसको इवज भी देना पड़ेगा। तवज्जो है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं कि ये जिजिया इस्मत का बदल है, ये काफिर तो कत्ल का मुस्तहिक था लेकिन हमने इसको कत्ल नहीं किया, यानी इसको इस्मत हासिल हो गई, इसकी जान मासूम हो गई, तो इसके इवज में इसको जिजिया देना पड़ेगा। या दूसरा कौल उनका इस बारे में यह है कि यह जिजिया जो है रिहाइश का बदल है, यह जिम्मी जो है यह काफिर है लेकिन हमने इसको दारुल इस्लाम में रिहाइश दी हुई है, हमने इसे दारुल इस्लाम में रहने दिया है, तो यह जो जिजिया है यह इस रिहाइश का बदल है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह के दो कौल आ गए, साहिब हिदायत दोनों को जमा फरमा देंगे कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक ये जो जिजिया है या तो ये उसकी इस्मत का इवज है या उसकी रिहाइश का इवज है, और जब इस काफिर ने मुआवज वसूल कर लिया यानी एक साल गुजर गया और इसको इस्मत हासिल रही, हमने इसको कुछ नहीं कहा, तो इसने मुआवज वसूल कर लिया लिहाजा इसे इवज के तौर पर जिजिया देना पड़ेगा, या एक साल गुजर गया और इसने एक साल रिहाइश रखी दारुल इस्लाम के अंदर तो इसने मुआवज वसूल कर लिया लिहाजा इवज के अंदर इसे अब जिजिया देना पड़ेगा। वो फरमाते हैं ये इसी तरह है जैसे एक शख्स जो है किराए पर एक मकान ले ले तो साल गुजर जाए तो उसके बाद चाहे वो शख्स मुसलमान हो चाहे मर जाए किराया उसको हर हाल में देना पड़ेगा, उसके माल में से अदा किया जाएगा। तो जैसे इजारे के अंदर रिहाइश वसूल हो जाए तो फिर इवज मरने से भी साकित नहीं होता और इस्लाम लाने से भी साकित नहीं होता। इसी तरह दारुल इस्लाम के अंदर अब यह रहा है, इसने रिहाइश रखी है तो यहां पर भी इसके इस्लाम की वजह से या मरने की वजह से वो जिजिया साकित नहीं होगा। या ये जो जिजिया है बदल है इस्मत का तो ये सुला अंदमिल आमद के दर्जे में है। एक आदमी दूसरे को कत्ल कर दे तो मकतूल के अवलिया इससे किसास लेना चाहते हैं लेकिन ये उनसे सुलह की बात करता है, वो बिलाखिर किसी माल पर राजी हो जाते हैं, सुलह हो जाती है। तो जैसे सुलह के बाद वो माल जो है वो उस पर आदमी पर से साकेत नहीं होता क्योंकि उसकी जान बच गई है इस सुलह की वजह से, चाहे उसके बाद वो मुसलमान हो जाए वो आदमी चाहे वो मर जाए वो सुलह वाला माल देना पड़ेगा भाई। तो यहां पर भी इसी तरह है, ये जो जिम्मी है इसको इस्मत मिल गई थी, एक साल गुजर गया है और तो लिहाजा इसने मुआवज वसूल कर लिया है तो अब इसको इवज देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं खिलाफन ले शाफी रहमहुल्लाह ताला फीहिमा बखिलाफ इमाम शाफी रहमहुल्लाह के इन दोनों के अंदर लहू उनकी दलील यह है कि अन्नहा वजबत बदलन अनिल इस्मती कि ये जो जिजिया वाजिब हुआ है ये इस्मत का बदल होकर वाजिब हुआ है। औ अनि सुकना या उनका दूसरा कौल यह है कि यह रिहाइश का बदल होकर वाकई हुआ है। वकद वसल इलैहिल मुअव्वज़ और तहकीक ये जो शख्स था इसको मुअव्वज़ पहुंच चुका है। फला यस्कुतु अन्हु इवज बिहाजल आरिजी तो यह जो आरिज पेश आया इसकी वजह से इससे इवज साकित नहीं होगा। यह जो आरिज पेश आया कि यह मुसलमान हो गया या यह मर गया उसकी वजह से इवज साकित नहीं होगा। कमा फिल उजरती जैसे कि उजरत के अंदर, उजरत के अंदर जब रिहाइश वसूल कर ली तो फिर वहां इवज साकित नहीं होता तो यहां भी इवज साकित नहीं होगा। तो कहते हैं कमाफिल उजरती जैसे उजरत के अंदर है, वसुलह अंदमिल आमदी और जैसे कि सुला अंदमिल आमद के अंदर है, जानबूझ कर कत्ल करे उसके अंदर सुला की जाए तो वहां उस शख्स की जान बच गई तो वहां इस्लाम या मौत की वजह से वो माल साकित नहीं होता। आगे देखिए वलना अब हमारी दलील आ गई, वलना और हमारी दलील जो है कौलहु अलैहि सलातु वस्सलाम वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि आपने फरमाया लैसा अला मुस्लिमीन जिजियतुन मुसलमान पर जिजिया नहीं है, मुसलमान पर जिजिया नहीं है। ये हदीस के अल्फाज आम हैं, मालूम हुआ मुसलमान पर किसी सूरत में जिजिया नहीं आ सकता, न इब्तिदाअन और ना बका अन भाई तवज्जो है। बल्कि फुकहा फरमाते हैं कि यहां बका वाली हालत ही मुराद है क्योंकि इब्तिदाअन तो मुसलमान पर जिजिया आ ही नहीं सकता, सिर्फ बका अन जिजिया आ सकता है। जिजिया काफिर पर लाजिम किया जाता है तो इब्तिदाअन मुसलमान पर जिजिया आ ही नहीं सकता, हां बका अन जिजिया मुसलमान पर आ सकता है। जैसे मस्कूरा सूरत में जिम्मी पर साल गुजर गया है उस पर जिजिया वाजिब हो चुका है और फिर यह मुसलमान हो गया तो अब मुसलमान हुआ लेकिन जिजिया तो इसके जिम्मे वाजिब था तो यहां एहतमाल पैदा होता है कि क्या मुसलमान होने के बाद भी यह जिजिया इस पर बाकी रहेगा या बाकी नहीं रहेगा। तो उसी को हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस हदीस में बयान फरमा दिया कि लैसा अला मुस्लिमीन जिजियतुन कि मुसलमान पर जिजिया नहीं है। बात समझ में आ गई। आगे देखिए वली अन्नहा वजबत, यहां से अहनाफ की अकली दलील जिक्र कर रहे हैं साहिबे हिदाया, कहते हैं वली अन्नहा वजबत उकूबतन अलल कुफरी कि ये जो जिजिया वाजिब होता है ये कुफर पर बतौरे सजा के वाजिब होता है, कुफर की वजह से बतौरे सजा के जिजिया वाजिब होता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने तो फरमाया था कि यह जिजिया ये इवज है, यह जिजिया ये इवज है यानी ये बदले मुआवजा है। हम कहते हैं नहीं ये बदले मुआवजा नहीं है, ये उकूबत है भाई, ये सजा है, इसने कुफर जैसा जुर्म किया है तो इस पर जिजिया वाजिब कर दिया गया। तो हम कहते हैं वली अन्नहा वजबत उकूबतन अलल कुफरी कि ये कुफर पर सजा के तौर पर वाजिब हुआ है। वलिहादा तुसम्मा जिजियतन इसीलिए इसको जिजिया कहते हैं। वहिया वल जजा वाहिदुन और जिजिया और जजा एक ही है। भाई जजा का क्या माना, बदला और सजा, जजा का क्या माना, बदला और सजा, तो जिजिया का भी यही माना है, यह भी बदले और सजा के तौर पर वाजिब हुआ है भाई। तो कहते हैं वलिहादा तु सम्मा जिजियतन, और इसीलिए इसको जिजिया कहते हैं, वही अवल जजा वाहिदुन, और ये और जजा एक ही है, यानी दोनों बदले और सजा के लिए हैं। वह उकूबतुल कुफरी तस्कुतु बिल इस्लामी, और कुफर की जो सजा है वो तो इस्लाम की वजह से साकित हो जाती है। जब ये मुसलमान हो गया तो ये जिजिया बतौर सजा के था, तो कुफर की सजा इस्लाम की वजह से खत्म हो जाती है, तो ये जिजिया भी साकित हो जाएगा। तो कहते हैं वह उकूबतुल कुफरी तस्कुतु बिल इस्लामी, और कुफर की सजा जो है इस्लाम की वजह से साकित हो जाती है। वला तुकामु बादल मौती, और इसी तरह मौत के बाद सजा कायम नहीं की जाती, सजा मौत के बाद कायम नहीं की जाती। लिहाजा इसीलिए किसी शख्स पर अगर हद वाजिब हो जाए, उसको कोड़े लगेंगे लेकिन उससे पहले ही वो मर जाता है, तो मरने के बाद तो कोड़े नहीं लगाए जाते, मरने के बाद तो सजा नहीं दी जाती भाई। तो यहां पर भी जब किसी शख्स पर जिजिया वाजिब हुआ लेकिन फिर वो मुसलमान हुआ या मर गया तो वो जिजिया साकित हो जाएगा। तो कहते हैं वला तुका मुबादल मौती, और नीज इसी तरह सजा जो है वो मौत के बाद कायम नहीं की जाती। वली अन्न शर अल उकूबति फि दुनिया ला यकून इल्ला लिदफ़ शर्री, वली अन्न शर अल उकूबति फि दुनिया, और नीज इसलिए कि दुनिया के अंदर जो सजा की मशरूइयत है, सजा का जो मशरू होना है, ला यकून इल्ला लिदफ़ शर्री, वो नहीं है मगर सिर्फ शर को दफा करने के लिए। दुनिया में ये जो सजाएं मुकर्रर फरमाई हैं अल्लाह ने, ये किस लिए है, शर को दफा करने के लिए हैं। और मौत की वजह से या इस्लाम की वजह से तो इस आदमी का शर खत्म हो चुका है, लिहाजा ये जिजिया जो बतौर सजा का था ये भी साकित हो जाएगा। तो कहते हैं वली अन्न शर अल उकूबति फी दुनिया, और नीज इसलिए क्योंकि दुनिया के अंदर सजाओं का मशरू होना यानी उनका जायज होना, ला यकून इल्ला लिदफ़ शर्री, वो नहीं है मगर सिर्फ शर को दूर करने के लिए। वक़द इंदफ़अ बिल मौत वल इस्लामी, और तहकीक वो शर तो दूर हो चुका है मौत और इस्लाम की वजह से। वली अन्नहा वजबत बदलनानी नुसरति फी हकीना, और नीज इसलिए क्योंकि ये जो जिजिया है ये नुसरत से बदल होकर वाजिब हुआ है, फी हकीना हमारे हक में, हमारे हक में जिजिया क्यों वाजिब हुआ है, मदद से बदल है, ये हमारी जानी मदद तो नहीं कर सकता, तो फिर मुजाहिदीन की माली मदद करेगा। तो कहते हैं वली अन्नहा वजबत बदलनानी नुसरति फी हकीना, और इसलिए क्योंकि जिजिया जो है हमारे हक में मदद से बदल होकर वाजिब हुआ है। वकद कदरा अलैहा बिनफ्सिही बादल इस्लामी, और तहकीक ये मदद पर खुद ही कादिर हो गया है इस्लाम लाने के बाद। जब ये इस्लाम ले आया तो ये तो अब अपनी जान के जरिए हमारी मदद करने पर कादिर हो गया, लिहाजा अब इस पर जिजिया नहीं आएगा, क्योंकि जिजिया तो इसी जानी मदद के बदले के तौर पर ही तो वाजिब हुआ था भाई। तो कहते हैं वक़द क़दरा अलैहा बिनफ्सिही बादल इस्लामी, और तहकीक ये उस मदद पर खुद ही कादिर हो गया है इस्लाम लाने के बाद। वल इस्मतु तस्बुतु बिकौनिही आदमियन, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि जो जिजिया है ये इस्मत से बदल है, ये जो जिजिया है ये इस्मत से या रिहाइश से बदल है। हम कहते हैं नहीं, ये जिजिया जो है इस्मत से बदल नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि इस्मत तो इसको हासिल है आदमी होने की वजह से, इस्मत इसको हासिल है आदमी होने की वजह से, इंसान होने की वजह से। यह बात पीछे गुजर चुकी है कि अल्लाह ताला ने इंसान को मुकल्लफ बनाया है, उसके लिए शरई अहकाम नाजिल फरमाए हैं, और इंसान पर लाजिम है कि वो इन अहकाम पर अमल करे और इनके मुताबिक जिंदगी गुजारे। तो लिहाजा ये मुकल्लफ होना तकाजा करता है कि इंसान का कत्ल जायज नहीं होना चाहिए, उसको इस्मत हासिल होनी चाहिए, वो मासूम और महफूज होना चाहिए। वजह यह कि अगर उसको इस्मत हासिल नहीं होगी तो फिर तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा, वो जिंदा ही नहीं रहेगा, जब जिंदा नहीं रहेगा तो अल्लाह के अहकाम पर कैसे अमल करेगा। तो मालूम हुआ ये जिम्मी को जो इस्मत हासिल है ये इसके आदमी होने की वजह से है। हां, यही जिम्मी जब हरबी बन जाता है तो इसको हरबी होने का शर आरिज हो जाता है, फिर इसका कत्ल जायज होता है, लेकिन इस वक्त तो ये जिम्मी है, इसने अहदे जिम्मा को कबूल कर लिया है, इसकी जंग का शर दूर हो चुका है, तो लिहाजा ये अपनी असल इस्मत पर लौट आया। तो इसको जो इस्मत हासिल है वो आदमी होने के एतबार से इसको इस्मत हासिल है, जिजिये की वजह से इसको इस्मत हासिल नहीं है। भाई ये माना है वल इस्मतु तस्बुतु बिकौनिही आदमियन, और इस्मत जो है साबित है इसके आदमी होने की वजह से। वह जिम्मी युयस कुनु मिल का नफसी ही, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने जिक्र फरमाया था कि जिम्मी जो है उसने हमारे दारुल इस्लाम में रिहाइश रखी है, लिहाजा उसके बदले के तौर पर इस पर जिजिया है। तो हम जवाब देते हैं कि रिहाइश तो इसने अपनी जाती मिल्कियत में रखी है, वो मकान जिसमें यह रहता है वो तो उसकी जाती मिल्कियत है, तो उसकी वजह से इस पर बदल वाजिब नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं वह जिम्मी यस्कुनु मिल्का नफ्सिही, और जिम्मी जो है वो तो अपनी जाती मिल्कियत के अंदर रहता है। फला माना लि ईजाबी बदल इस्मति व सुकना, फला माना लिहाजा कोई सबब नहीं है लि ईजाबी बदल इस्मति व सुकना, रिहाइश और इस्मत का बदल वाजिब करने का कोई सबब नहीं है कि रिहाइश या इस्मत के बदले में जिजिया वाजिब किया जाए, क्योंकि इस्मत तो आदमी होने की वजह से हासिल है और रिहाइश इसने अपनी मिल्कियत में रखी हुई है, तो इनकी वजह से जिजिया वाजिब करार नहीं दिया जा सकता। बात समझ में आ गई। आगे देखिए वह इनी जतमात अलैहिल हौलानी तदाखलतिल जिजियतान, यहां से आपको बतलाएंगे कि अगर एक शख्स पर दो सालों की जिजिये जमा हो जाएं या ज्यादा सालों की जिजिये जमा हो जाएं तो उनमें तदाखुल आ जाएगा, एक ही जिजिया अदा करना काफी हो जाएगा। वजह यह कि जिजिया बतौर सजा के वाजिब हुआ है और सजाओं में तदाखुल होता है। एक आदमी कई चोरियां भी कर ले, एक ही सजा, एक ही दफा का हाथ काटना सबके लिए काफी हो जाता है। तो कहते हैं वह इनी जता मात अलैहिल हौलानी, और अगर उस शख्स पर दो साल जमा हो जाए, यानी उस जिम्मी पर दो साल, हौल साल को कहते हैं। भाई देखिए यहां साहिब हिदाया मुअन्नस फेल लाए, वह इनी जता मात अलैहिल हौलानी, हालांकि हौल का लफ्ज़ तो मुजक्कर है और फाइल मुजक्कर हो तो फेल को भी मुजक्कर लाते हैं, लेकिन साहिब हिदाया यहां मुअन्नस फेल लाए। तो शारहीन फरमाते हैं कि यह हौल सनतुन की तावील में है, यानी ये हौलानी किस तावील में है, सनतानी, और सनत उनके अंदर तो गोलता तानीस वाली मौजूद है, तो ये उस तावील में इसके लिए मुअन्नस का फेल ले आए। या दूसरा जवाब ये देते हैं कि अल हौलानी से पहले जिजियातान का लफ्ज महजूफ निकाल लें कि उसमें जमा हो जाएं, दो जिजिये जमा हो जाएं, तो असल में मुजाफ यहां महजूफ है और तकदीर कलाम यूं है वह इन्हीं जतमात अलैही जिजिया तल हौलानी, जिजिया तानी था, तस्निया था, नून इजाफत की वजह से गिर गया भाई। तो कहते हैं वह इनी जतमात अलैहिल हौलानी, और अगर उस जिम्मी पर दो साल के जिजिये जमा हो जाएं, तदाखलतिल जिजिया तानी, तो उन दो जिजियों में तदाखुल हो जाएगा। वफिल जामिई सगीरी, ये तो खुदूरी की इबारत थी कि दो जिजिया आए तो उनमें तदाखुल हो जाएगा, लेकिन साहिब हिदाया की आदत है अगर जामे सगीर की इबारत जरा मुख्तलिफ हो या उसमें कोई नया फायदा हो तो उसको भी जिक्र करते हैं, तो अब उसको जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं वफिल जामिई सगीरी, और जामे सगीर के अंदर है वह मन लम युखज़ मिन्हु खराजु रअसी ही, और जिस शख्स से उसका खराज रस नहीं लिया गया। खराज रस आप पढ़ चुके, इसी जिजिया का नाम है, एक खराजुल अर्ज है और एक खराजुल रस है। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह जामे सगीर में फरमाते हैं वमन लम युखज मिन्हु खराजु रसिही, और जिस शख्स से उसका खराज रस नहीं लिया गया, हत्ता मज़ति सनतु, यहां तक कि वो साल गुजर गया, वजाअत सनतुन उखरा, और दूसरा साल आ गया, लम युखज, तो उससे वो जिजिया नहीं लिया जाएगा। वहां ज़ाइंद अबी हनीफा रहिमहुल्लाह, साहिब हिदाया आगे फरमा रहे हैं वहां जाइंदा अबी हनीफत रहमुल्ला, कि इमाम मोहम्मद रहमुल्ला ने ये तो जामे सगीर में जिक्र किया है कि अगला साल आ जाए तो गुजश्ता जिजिया साकित हो जाएगा, ये इमाम साहिब के नजदीक है। तो कहते हैं वहां जाइंदा अबी हनीफत रहमुल्ला, कि ये इमाम साहिब के नजदीक है। वकाल अबू यूसुफ व मोहम्मद रहिमहुमल्लाहु तआला युखज़ु मिन्हु, और साहिबैन फरमाते हैं कि उसे वो गुजश्ता जिजिया भी लिया जाएगा। वह हुआ कौलु शाफिई रहमहुल्लाह, और यही कौल है इमाम शाफी रहमतुल्लाह का भी, वो भी फरमाते हैं कि साल गुजरने की वजह से जिजिया साकित नहीं होगा, गुज़श्ता जिज़िया भी लिया जाएगा। वह इन माता इंदा तमाम इस सनती, और अगर वो शख्स वो जिम्मी मर गया इंदा तमाम इस सनती साल के पूरा होते वक्त, यानी साल के पूरा होने पर वो मर गया, तो लम युख़ज़ मिन्हु फी क़ौलिहिम जमीअ, तो उस मरने वाले से जिज़िया नहीं लिया जाएगा। फी क़ौलिहिम जमीअ, इन सब के कौल में, यानी इसमें हमारे तीनों अइमा और इमाम शाफी रहमतुल्लाह का इत्तेफाक है कि जो जिम्मी साल के पूरा होने पर मर जाए उससे जिजिया नहीं लिया जाएगा। व कदालिका इन मातफी बाज़ी सनती, और इसी तरह अगर वो जिम्मी बाज़े साल में मर गया, यानी साल अभी पूरा नहीं हुआ था उससे पहले ही वो मर गया, तब भी इसी तरह है, यानी जिजिया साकित हो जाएगा। आगे साहिब हिदाया अब इसकी शरह कर रहे हैं, कहते हैं अम्मा मसअलतुल मौत फकत जकर नाहा, तो मौत का जो मसला है उसको तो हमने जिक्र कर दिया। साहिब हिदाया ने पीछे ही जिक्र किया था कि अगर कोई जिम्मी मुसलमान हो जाए तब भी जिजिया साकित हो जाएगा, और कोई जिम्मी मर जाए तब भी जिजिया साकित हो जाएगा। तो कहते हैं अम्मा मसअलतुल मौत फकत जकर नाहा, तो मौत का जो मसला है उसको तो तहकीक हमने पीछे जिक्र कर दिया। वकील, और कहा गया है खराजुल अर्ज अला हादल खिलाफी, कि जमीन का खराज भी इसी इख्तिलाफ पर है, जमीन का खराज भी इस इख्तिलाफ पर है। इमाम साहब के नजदीक अगर कई सालों का खराज जमा हो गया तो उनमें तदाखुल हो जाएगा, जबकि साहिबैन फरमाते हैं उसमें तदाखुल नहीं होगा। तो कहते हैं वकीला, और कहा गया है खराजुल अर्ज अला हादल खिलाफी, कि जमीन का खराज भी इसी इख्तिलाफ पर है। वकीला, और कहा गया है ला तदाखुल फीही बिल इत्तिफाकी, कि खराज के अंदर बिल इत्तिफाक तदाखुल नहीं है। बास फुकहा तो फरमाते हैं खराज के मसले में भी इमाम साहब और साहिबैन का इसी तरह इख्तिलाफ है, इमाम साहब के नजदीक कई सालों का खराज जमा हो जाए तो उसमें तदाखुल हो जाएगा, और साहिबैन फरमाते हैं उसमें तदाखुल नहीं होगा, जबकि बास फुकहा फरमाते हैं नहीं, ये जो खराज जो है इसके अंदर बिल इत्तेफाक तदाखुल नहीं होगा, कई साल भी गुजर जाए तो उन सबका खराज वसूल किया जाएगा। तो कहते हैं वकीला, और कहा गया है ला तदाखुल फीही बिल इत्तिफाकी, कि खराज के अंदर बिल इत्तिफाक तदाखुल नहीं है। लहुमा फिल खिलाफियति, साहिबैन की दलील इख्तिलाफी मसले में, साहिबैन की दलील इख्तिलाफी मसले में, यानी जिजिए में, जिजिए के अंदर इमाम साहब के नजदीक कई सालों का जिजिया जमा हो जाए तो उसमें तदाखुल होगा, साहिबैन फरमाते हैं तदाखुल नहीं होगा। तो अब उसकी वजह जिक्र कर रहे हैं, तो कहते हैं लहुमा फिल खिलाफियति, साहिबैन की दलील इख्तिलाफी मसले में वो ये है कि अन अल खराज वजबा इवजन, कि जो खराज वाजिब हुआ है ये बतौर इवज के है, यानी वही इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने जो बात की थी कि ये खराज ये इसकी इसमत का इवज है, ये जो इसकी जान मासूम हमने करार दी है, या ये इसके रिहाइश का इवज है, ये जो पूरा साल दारुल इस्लाम में रहा है। तो साहिबैन की दलील ये है कि अन अल खराज वजबा इवजन, ये खराज जो है इवज होकर वाजिब हुआ है। वल आवाज इजा जतमात, और इवज जो है जब वो जमा हो जाए, वह अम का नस्तीफा उहा, और उनको वसूल करना मुमकिन हो, तो तौफा, तो फिर उनको वसूल किया जाता है। वकद अम का नफी मा नहनु फीही, और तहकीक मुमकिन है इसके अंदर जिस मसले के अंदर हम हैं, इस मसले के अंदर भी वो जिम्मी जिंदा है तो उससे वो इवज यानी जिजिया वसूल करना मुमकिन है, तो गुज़श्ता तमाम सालों का जिजिया वसूल किया जाएगा। और याद रखो ये जो जिम्मी से जिजिया वसूल किया जाता है ये इसके अंदर इसकी जिल्लत है, तो यानी जिजिया इजलाल के तरीके पर वसूल होता है, तो जब तक ये जिम्मी है तो इजलाल के तरीके पर इसको जलील करते हुए इससे जिजिया वसूल करना मुमकिन है, लेकिन जब ये मुसलमान हो गया तो मुसलमान की तो इज्जत करने का हुक्म दिया गया है, तो अब इसका इजलाल यानी इससे जिजिया वसूल करना मुमकिन न रहा, लिहाजा उस सूरत में बिल इत्तेफाक जिजिया साकित हो जाएगा। तो कहते हैं वकद अम का नफी मा नहनु फीही, और तहकीक मुमकिन है जिजिया वसूल करना फी मा नहनु फीही इस मसले के अंदर जिसके अंदर हम हैं। बाद तवाली सीनीना, बाद कई सालों के तसलसल के, तवाली का माना पैदर पै होना, और सीनीन जमा है सनतुन की, बाद तवाली सीनीना कई सालों के तसलसल के बाद भी इसमें जिजिया काफिर से वसूल करना मुमकिन है। बिखिलाफ इमा इदा असलमा, बिखिलाफ इस सूरत के कि जब वो जिम्मी मुसलमान हो गया, लिअन्नहु ताअज़्ज़र इस्तीफाउहु, इसलिए क्योंकि जिजिये का वसूल करना मुमकिन न रहा, क्योंकि जिजिये की वसूली में तो इजलाल है, इसको जलील करना है, और मुसलमान को तो जलील नहीं किया जा सकता भाई। तो कहते हैं बेखिलाफी मा इदा असलमा, बखिलाफ इस सूरत के कि जब वो मुसलमान हो गया, ले अन्नहु ताअज़्ज़र इस्तीफा उहु, इसलिए क्योंकि जिजिये का वसूल करना मुताज़िर हो गया। वली अबी हनीफत रहमहुल्ला, अब इमाम साहब की दलील आ गई। वली अबी हनीफत रहमहुल्ला, और इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नहा वजबत उकूबतन अलल इसरार अलल कुफ्र अला मा बयन्नाहु। इमाम साहब फरमाते हैं कि जो जिजिया है यह कुफर पर जमे रहने की वजह से वाजिब होता है, कि यह शख्स कुफर पर जमा हुआ है तो बतौर सजा के इस पर शरीयत ने जिजिया वाजिब कर दिया। तो वली अबी हनीफत रहमहुल्ला, तो इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नहा वजबत उकूबतन, कि जिजिया जो वाजिब हुआ है बतौर सजा के है, अलल इसरार अलल कुफरी, इसरार का माना है जमे रहना, अलल इसरार अलल कुफरी, कुफर पर जमे रहने की वजह से, अला मा बयन्नाहु, उस वजह से जो हमने बयान कर दिया, कि इसीलिए इसको जिजिया कहते हैं कि यह बतौर सजा के है। वलिहादा ला तुकबलु मिन्हु लौ बअसा अला यदि नाइबिहि फी असह रिवायात, कहते हैं इसीलिए अगर जिम्मी जिजिया अदा करने के लिए अपने किसी नाइब को भेजे, किसी और को जिजिया देकर भेजे कि मेरा जिजिया जमा करवा आओ, तो ज्यादा सही रिवायत के मुताबिक उसके नाइब से यह जिजिया वसूल नहीं किया जाएगा, बल्कि उस जिम्मी को कहा जाएगा कि खुद आकर अदा करो। तो एक रिवायत के मुताबिक नाइब से वसूल कर लेंगे, वो भी सही रिवायत है, लेकिन दूसरी रिवायत ज्यादा सही है कि नाइब से जिजिया वसूल नहीं किया जाएगा। तो कहते हैं वलिहादा ला तुकबलु मिन्हु, और इसीलिए जिजिया जो है जिम्मी से कबूल नहीं किया जाएगा। लौ बअसा अला यदि नाइबिही, अगर उसने जिजिया अपने नाइब के हाथ भेजा, फी असहिर रिवायात, रिवायात में से ज्यादा सही रिवायत के मुताबिक, बल युकल्लफु, बल्कि उस जिम्मी को जिम्मेदार बनाया जाएगा, अन यातिया बिही बिनफ्सिही, कि वो इस जिजिये को खुद लेकर आए, फयुअती काइमन, तो वो खड़े होकर जिजिया देगा, वलकाबिज़ु मिन्हु क़ाइदुन, और उस जिजिये पर कब्जा करने वाला बैठा होगा, यानी इमाम या नाइब बैठकर इस जिम्मी से वसूल करेगा और यह जिम्मी खड़े होकर जिजिया अदा करेगा। तो कहते हैं फयुअती क़ाइमन वलकाबिज़ु मिन्हु क़ाइदुन, तो यह जिम्मी खड़े होकर जिजिया देगा और इससे इस जिजिये पर कब्जा करने वाला बैठा होगा। वफी रिवायतिन, और एक रिवायत में यह है, यहुजु बितलबीबिही वयहुज्जुहु हज्जा, तलबीब भाई, तलबीब कहते हैं गरेबान भाई, ये जो कमीज का सीने के ऊपर गर्दन के नीचे वाला हिस्सा है, और हज़ा या हुज़ू के माने हरकत देना। तो बाज रिवायात में आता है कि इस जिम्मी को ग्रेबान से पकड़ा जाएगा और उसको हिलाया जाएगा और कहा जाएगा, आतीनिल जिजियाता या जिम्मी यू, ए जिम्मी मुझे जिजिया दो, यूं कहा जाएगा, आतीनिल जिजियाता या अदू वल्लाह, अल्लाह के दुश्मन जिजिया दो। मालूम हुआ इजलाल के तरीके पर जिजिया वसूल किया जाएगा। तो कहते हैं वफी रिवायतिन, और एक रिवायत में है, या खुजू बी तलबी भी ही, तलबीब भाई लब्बा भाई उलब्बी वो तलबीब का माना है ग्रेबान पकड़ना। तो कहते हैं वफी रिवायतिन, और एक रिवायत में है, या खुजू बी तलबी भी ही, कि इमाम या उसका नाइब उस जिम्मी को ग्रेबान से पकड़ेगा, व यहुज़ुहु हज़्ज़ा, और उसको हिलाएगा, व यकूल, और उससे कहेगा, आतीनिल जिजियाता या जिम्मी यू, कि ए जिम्मी मुझे जिजिया अदा करो। वकीला, और कहा गया है, अदू वल्लाही, के यूं कहेंगे कि आतीनिल जिजियाता या अदू वल्लाही, के अल्लाह के दुश्मन जिजिया अदा करो। फसबता अन्नहु उकूबतुन, तो साबित हो गया कि यह जिजिया जो है यह सजा है। वल उकूबात इज़ज्तमा तदाखलत कल हुदूदी, और सजाएं जब जमा हो जाए तो उनमें तदाखुल होता है जैसे कि हुदूद हैं। वली अन्नहा वजबत बदलन अनिल कत्ल फी हक़हिम, और नीज इसलिए क्योंकि यह जो जिजिया वाजिब हुआ है यह उनको फार के हक में कत्ल का बदला है कि हम उनको कत्ल नहीं कर रहे, वो तो कत्ल के मुस्तहिक हो चुके थे। तो कहते हैं वली अन्नहा वजबत बदलन अनिल कत्ल फी हक़हिम, और इसलिए क्योंकि जिजिया जो है इन कुफार के हक में कत्ल का बदल होकर वाजिब हुआ है। वानी नुसरती फी हक़ीना कमा ज़करना, और हमारे हक में ये जिजिया जो है नुसरत का बदल होकर वाजिब हुआ है, मदद का बदल होकर वाजिब हुआ है, कमा ज़करना जैसे हमने जिक्र कर दिया। लाकिन फिल मुस्तकबिल ला फिल माजी, लेकिन मुस्तकबिल के अंदर ना के माजी के अंदर, भाई कुफार से हम जिजिया ले रहे हैं, ये किस चीज का बदल है, इनके हक में कत्ल का बदल दे रहे हैं, लेकिन कौन सा कत्ल, जो जमाना गुजर गया या जो आने वाला है, कहते हैं भाई मुस्तकबिल का जमाना मुराद है कि मुस्तकबिल में यानी आने वाले पूरे साल में हम तुम्हें कत्ल नहीं करेंगे, और हम जो इनसे जिजिया ले रहे हैं वो हमारे हक में मदद का बदल है, लेकिन मुस्तकबिल के एतबार से कि मुस्तकबिल में गोया इस साल में हमारी मदद कर रहा है, ना कि माजी के एतबार से, क्योंकि माजी तो गुजर गई। तो काफिर को माजी में इस्मत चाहिए या मुस्तकबिल के अंदर इस्मत चाहिए? मुस्तकबिल में इस्मत चाहिए, और हमें भी मुस्तकबिल में मदद चाहिए, माजी तो गुजर चुका है। तो मालूम हुआ काफिर के हक में यह जिजिया उसके कत्ल का बदल है और हमारे हक में यह जिजिया मदद का बदल है, लेकिन यह दोनों मुस्तकबिल के एतबार से हैं, माजी के एतबार से नहीं, क्योंकि माजी तो गुजर चुकी है भाई। ना माजी में हमें अब मदद की जरूरत और ना उसे माजी में इस्मत की जरूरत है भाई। तो कहते हैं वली अन नहा वजबत बदलन अनिल कत्ल फी हकहिम, और इसलिए क्योंकि ये जिजिया जो है काफिर के हक में कत्ल से बदल है। वह अनिल नुसरती फी हकीना, और हमारे हक में ये मदद से बदल है। कमा जकरना, जैसे हमने जिक्र कर दिया, लाकिन फिल मुस्तकबिल ला फिल माजी, लेकिन ये मुस्तकबिल के एतबार से है ना कि माजी के एतबार से। ले अन कत्ल इन नमा युस्तौफा लिहरा बिन काइम फिल हाली, लिअन अलकत्ला इन नमा युस्तौफा, इसलिए क्योंकि कत्ल जो है वो वसूल किया जाता है। लिहराब इन काइम इन फिल हाली, हिराब बमाने हर्ब के है, जंग को कहते हैं, इसलिए क्योंकि कत्ल जो है इन नमा युस्तौफा, इसको वसूल किया जाता है। लिहराब इन काइम इन फिल हाली, उस जंग की वजह से जो फिलहाल मौजूद हो, जो कत्ल किया जाता है वो फिलहाल जो जंग हो उसकी वजह से कत्ल किया जाता है, जो माजी में जंग गुजर चुकी है उसकी वजह से किसी को कत्ल नहीं किया जाता। तो कहते हैं लिअन अल कत्ल इन नमा युस्तौफा लिहराब इन काइम इन फिल हाली, इसलिए क्योंकि कत्ल जो है उसको वसूल किया जाता है उस जंग की वजह से जो फिलहाल मौजूद है। ला लिहराब इन माजिन, न कि उस जंग की वजह से जो गुजर चुकी है। वह कदन नुसरतु फिल मुस्तकबिली, और इसी तरह मदद जो है वो भी मुस्तकबिल में होती है। लिअन अल माजिया वकातिल गुनिया तो अनहु, इसलिए क्योंकि माजी से तो बेनियाजी हासिल हो चुकी है। गुनिया का क्या माना? बेनियाजी। माजी में अब हमें किसी मदद की जरूरत नहीं क्योंकि माजी का जमाना तो गुजर चुका है। तो कहते हैं वकदन नुसरतु फिल मुस्तकबिली, और इसी तरह मदद जो है वो भी मुस्तकबिल में होती है। लिअन अल माजिया वकातिल गुनिया तो अनहु, इसलिए क्योंकि माजी जो है उससे तो बेनियाजी हासिल हो चुकी है। ثم قول محمد رحمه الله تعالى في الجزيه في الجامع الصغير, भाई पीछे मतन गुजरा था, साहिब कुदूरी ने आपको बतलाया था। وان اجتمعت عليه الحولان تداخلت الجزيتان, दो साल जमा हो गए तो जिजियों में तदाखुल हो जाएगा। लेकिन आगे जामे सगीर की इबारत भी साहिब हिदाया ने जिक्र फरमाई थी और फरमाया था कि जामे सगीर में है। वह मल्लम यू खजमिन हु खराज रस ही, कि जिससे उसका खराज रस यानी जिजिया नहीं लिया गया। हता मजाती सनातु, यहां तक कि वो साल गुजर गया। वह जात सनातुन उखरा, और दूसरा साल आ गया। लम यू खज, तो फिर वो पिछला जिजिया नहीं लिया जाएगा। तवज्जो है भाई, अब सारी बहस करेंगे। जो मतन में लफ्ज आया वह जात सनातुन उखरा, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं जामे सगीर में, एक साल गुजर गया। व जाअत सनतुन उखरा, दूसरा साल आ गया। तो क्या दूसरा साल शुरू होते ही पिछला जिजिया साकित हो जाएगा या दूसरा साल भी गुजरना जरूरी है? तो फुकहा इख्तिलाफ करते हैं। बाज़ फरमाते हैं कि यहां तो जिक्र है वह जाअत सनतुन उखरा, दूसरा साल जब आ जाएगा, लेकिन यह मजाजन कहा गया है, माना यही है कि दूसरा साल जब गुजर जाएगा, क्योंकि जब साल गुजरेगा तब इस साल का भी जिजिया आ जाएगा। अब दो जिजिया जमा हो गए, साल के इब्तिदा में तो जिजिया नहीं आता भाई। तो मालूम है जाअत सनतुन उखरा का यह माना नहीं है कि दूसरा साल आ जाए, बल्कि माना यह है जब दूसरा साल गुजर जाए भाई। लेकिन साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि ज्यादा सही यह है कि हमारे नजदीक साल शुरू होते ही जिजिया वाजिब हो जाता है, क्योंकि अभी आपको बताया कि उसको मुस्तकबिल में इस्मत की हाजत है, माजी के अंदर इस्मत की हाजत नहीं, और हमें मुस्तकबिल में मदद की जरूरत है, माजी के अंदर हमें मदद की जरूरत नहीं है भाई। कहते हैं सुम्म कौलु मुहम्मदिन रहमहुल्लाहु ताला फिल जिजियाती फिल जामिया सगीरी, और फिर इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह का कौल जो है जिजिया के बारे में जामे सगीर में, वो जो फरमाया उन्होंने कि वजाअत सनतुन उखरा, ये जो कौल है उनका, हमलहु बाजुल मशाइख रहमहुल्लाहु ताला अलल मुजी मजाजन, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के इस कौल को महमूल किया है बाज़े फुकहा ने अलल मोजी ये माजी पर मजाजन बतौर मजाज के ये कलाम मजाज पर मबनी है। मुराद दूसरे साल का आना नहीं है बल्कि दूसरे साल का गुजरना मुराद है। यह माना है हमलहू बाजुल मशाइखी रहिमहुमुल्लाह के बाज फुकहा ने इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के इस कौल को महमूल किया है अलल मुज़ी ये मजाजन गुजरने पर मजाजन वकाल अल वुजूब भी आखिर सनती और वो फुकहा फरमाते हैं कि वुजूब जो है वो आखिर साल में होगा फला बुद्द मिनल मुज़ी लिहाजा उस दूसरे साल का गुजरना जरूरी है लिया तहक्कक़ल इज्तिमाउ ताकि जिजियों का जमा होना पाया जाए फया तदाखलु तो फिर इनमें तदाखुल हो जाएगा वाइंद अल बाजी और बाज फुकहा के नजदीक हुआ मजरी युन अला हकीकती ही कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का यह कलाम जो है जारी है अपनी हकीकत पर यानी आने से आना ही मुराद है गुजरना मुराद नहीं है। तो कहते हैं बास के नजदीक हुआ मजरी युन अला हकीकती ही इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का यह कौल अपनी हकीकत पर जारी है वल वुजूब इंदा अबी हनीफा रहिमहुल्लाह ताला भी अव्वलिल हौली और जिजिया का जो वजूब होता है इमाम साहब के नजदीक भी अव्वलिल हौली वो साल के अव्वल में होता है। यह बास फुकहा की बात चल रही है वो फरमाते हैं कि आने से आना ही मुराद है और इमाम साहब के नजदीक जिजिया का वजूब साल की इब्तिदा में ही हो जाता है फयतहक्कुल इज्तिमाउ बिमुजर्रदिल मजीई लिहाजा जिजिया का इज्तिमा पाया जाएगा बिमुजर्रदिल मजीई सिर्फ इस दूसरे साल के आने से ही यानी शुरू होने से ही वल असहु और ज्यादा सही कौल यह है कि अन अल वुजूब इंदा नाफी इब्तिदा इल हौली कि जिजिया का वजूब हमारे नजदीक साल की इब्तिदा में होगा वाइंदा शाफिई रहमहुल्लाह ताला फी आखिरी ही और इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक जिजिया का वजूब जो है साल के आखिर में होगा जब साल गुजर जाए एतबार बिज जकाती जकात पर कयास करते हुए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं जिस तरह जकात का वजूब साल के गुजरने के बाद होता है जब उस माले नामी पर साल गुजर जाता है फिर जकात वाजिब होती है इसी तरह जब साल पूरा हो जाएगा फिर उस साल का जिजिया वाजिब होगा भाई। तो वो इस जिजिये को किस पर कयास करते हैं जकात पर वह लाना और हमारी दलील यह है कि अन्नमा वजब बदलन आन हो कि जिजिया जिस चीज का बदल होकर वाक हुआ है ला यतहक्कु वो पाया नहीं जा सकता इल्ला फिल मुस्तकबिली मगर मुस्तकबिल में ही अला मा करर ना हो उस वजह से जो हमने साबित कर दिया कि जिजिया या तो इस्मत से बदल है या नुसरत से बदल है और इस्मत भी मुस्तकबिल में काफिर को चाहिए माजी की बात तो गुजर चुकी और मदद भी हमें मुस्तकबिल में चाहिए माजी तो गुजर चुका है। तो हम कहते हैं वलाना हमारी दलील यह है कि अन्नमा वजब बदलन अनहू कि वो कत्ल या वो नुसरत जो है जिससे जिजिया बदल होकर वाजिब हुआ है ला यतहक्कु इल्ला फिल मुस्तकबिली वो मदद और नुसरत नहीं हो सकती मगर मुस्तकबिल में ही अला मा कररनाहु उस वजह से जो हमने साबित कर दिया फतअज़्ज़रा इजाबहु बादा मुज़िल हौली लिहाजा जिजिया का वाजिब करना मुतअज़्ज़िर हो गया साल के गुजरने के बाद साल के गुजरने के बाद इसका वाजिब करना मुतासिर है क्योंकि जब साल गुजर गया तो जो साल गुजर गया उसमें हमें मदद की जरूरत भी नहीं और उस साल गुजरे हुए साल में कुफार को इस्मत की जरूरत भी नहीं क्योंकि वो तो गुजर चुका है भाई। बात समझ में आ रही है तो कहते हैं फताअज़्ज़रा इजाबहु बादा मुज़िल हौली तो साल के गुजरने के बाद उसके अंदर जिजिये का वाजिब करना मुमकिन न रहा फअवजबनाहा फी अव्वलिही तो हमने जिजिया को वाजिब कर दिया साल के अव्वल में यानी साल के शुरू में भाई। बात समझ में आ गई और नीज इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने इस जिजिये को कयास किया था जकात पर उसका भी हम जवाब देते हैं कि वजह यह कि जकात माले नामी पर आया करती है किस पर माले नामी पर और साल गुजरेगा तो माल के अंदर नमा पाई जाएगी बढ़ोतरी पाई जाएगी उसमें नफा पाया जाएगा या हकीकतन या तकदीरन भाई क्योंकि साल एक तवील जमाना है इसके अंदर माल के अंदर नमा का होना यानी बढ़ोतरी और अफजाइश का होना यह मुमकिन है लिहाजा साल के गुजरने से उस माल के अंदर नमा आएगी चाहे हकीकतन नमा आ जाए चाहे त तकदीरन नमा आए तो उसके बाद जकात वाजिब होगी, जबकि जिजिया जो है वो तो कुफार के हक में उनके कत्ल से बदल है और मुसलमानों के हक में ये उनकी नुसरत और मदद से बदल है, और कत्ल से भी उनको इस्मत चाहिए तो वो मुस्तकबिल में चाहिए, क्योंकि माजी तो गुजर चुका है, माजी में तो वो इस्मत के मोहताज नहीं, और नीज मुसलमानों के हक में ये जिजिया जो है उनकी नुसरत से बदल है और नुसरत भी मुस्तकबिल में चाहिए, क्योंकि माजी तो गुजर चुका है, माजी के अंदर तो हमें उनकी मदद की हाजत नहीं है, तो लिहाजा जिजिया जो है वो साल के शुरू में ही वाजिब हो जाएगा मुस्तकबिल की तरफ नजर करते हुए कि मुस्तकबिल के में उनको इस्मत की जरूरत है और हमें मदद की जरूरत है। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।